دیکھیے بھائی سبق کتاب پر متن دیکھیے. او بعدم ضرورت خلافها فممکنة عامة فهذه بسائط وقد تقيد العامتان والوقتيتان المطلقتان باللا دوام الذاتي فتسمى المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة والوقتية والمنتشرة. اچھا بھائی, موجہات کا بیان چل رہا ہے. آپ نے پڑھا کہ قضیہ حملیہ کے اندر ایک چیز کا ثبوت ہوتا ہے دوسری چیز کے لیے, یا ایک چیز کی نفی ہوتی ہے دوسری چیز سے. تو یہ جو قضیہ کے اندر ایک چیز کا ثبوت یا نفی ہے, نفس الامر اور واقع میں بھی اس موضوع کے لیے, یہ موضوع کے لیے یہ جو محمول ثابت ہوگا یا یہ جو محمول اس کی نفی اس سے کی جائے گی, اس کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوگی. مثلا میں کہتا ہوں زید قائم, تو نفس الامر اور واقع کے اندر جو زید کے لیے قیام ثابت ہے اس کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوگی. یا تو زید کے لیے یہ قیام ضروری ہوگا, اس سے جدا ہی نہیں ہو سکتا, یا زید کے لیے یہ قیام ممکن ہوگا, یا زید کے لیے یہ قیام دائمی ہوگا, یا زید کے لیے یہ قیام بالفعل ہوگا, یعنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہوگا. تو یہ جو کیفیت ہے اس کو قضیے کے اندر جب ذکر کیا جائے تو اس کو جہت کہتے ہیں بھائی, جہت. اور یہ جہت جو ہے, جہت قضیہ, اس کا مادہ قضیہ کے مطابق ہونا ضروری ہے. جہت جو ہے وہ دال ہے, اور جو مادہ قضیہ ہے وہ ہے مدلول. جیسے ایک ہے لفظ زید اور ایک ہے ذات زید, تو لفظ زید ہوا دال اور ذات زید ہوئی مدلول. تو یہ جہات بہت سی ہیں, لیکن مناطقہ کے نزدیک جو معتبر ہیں وہ یہی چار ہیں بھائی, جن کو وہ بضرورت, بالامکان العام, بالدوام اور بالفعل کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. اور جہاد جب زیادہ تو موجہات بھی بہت زیادہ, لیکن جو مناطقہ کے نزدیک معتبر ہیں وہ 15 موجہات ہیں بھائی, اور ان 15 میں سے 8 جو ہیں وہ بسیط ہیں, اور جو 7 ہیں وہ مرکب ہیں. تو قضیہ موجہہ بسیطہ وہ ہے جس میں صرف ایجاب ذکر ہو, یا صرف سلب یعنی صرف نفی ذکر ہو. اور قضیہ مرکبہ وہ ہے کہ ایک ہی قضیے کے اندر ایجاب بھی ذکر ہو اور سلب یعنی نفی بھی ذکر ہو بھائی. تو یہ 15 موجہات ہیں کل, اور ان میں سے ہم نے 7 پڑھ لیے تھے, 8واں پڑھ رہے تھے بھائی, 8واں ممکنہ عامہ بھائی. پہلے 7 کون کون سے تھے؟ اگر قضیے کے اندر ضرورت کی جہت مذکور ہو تو یہ ضروری ہونا, یا یوں کہیں یہ جو ضرورت ہے, یا یہ ذات کے اعتبار سے ہوگی, یا وصف کے اعتبار سے, یا وقت معین کے اعتبار سے, یا وقت غیر معین کے اعتبار سے. اگر یہ ضرورت ذات کے اعتبار سے ہو تو اس قضیہ موجہہ کو ضروریہ مطلقہ کہتے ہیں, اور اگر یہ ضروری ہونا وصف کے اعتبار سے ہو تو اس کو مشروطہ عامہ کہتے ہیں, اور اگر یہ ضرورت وقت معین کے اعتبار سے ہو تو یہ وقتیہ مطلقہ ہے, اور اگر یہ ضرورت جو ہے وقت غیر معین کے اعتبار سے ہو تو اس کو منتشرہ عامہ کہتے ہیں. جبکہ اگلے دو قضیے جو تھے, دائمہ مطلقہ اور عرفیہ عامہ, ان کے اندر دوام ذکر ہوتا ہے کہ یہ نسبت ذات موضوع کے لیے دائمی ہے بھائی. اور یہ دوام میں نے بتایا تھا پھر دو قسم پر ہو سکتا ہے, کبھی دوام ذاتی ہوتا ہے اور کبھی دوام وصفی. دوام ذاتی کا معنی یہ ہے کہ نسبت موضوع کے لیے دائمن ہوگی جب تک ذات موضوع موجود ہے, اور دوام وصفی کا معنی یہ ہے کہ یہ نسبت ذات موضوع کے لیے دائمن ہوگی جب تک وصف عنوانی موجود ہے. تو جس کے اندر دوام ذاتی ذکر ہو اس کو دائمہ مطلقہ کہتے ہیں, اور جس میں دوام وصفی ذکر ہو اس کو عرفیہ عامہ کہتے ہیں, عرفیہ عامہ. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں. सिर्फ फर्क इतना है जरूरिया मुतलका के अंदर भी जरूरत की कैद होती है और दायमा मुतलका के अंदर भी दवाम की कैद होती है। इसी तरह मशरूता आम्मा और उर्फिया आम्मा दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मशरूता आम्मा के अंदर जो है भी जरूरत की कैद होती है जबकि उर्फिया आम्मा के अंदर भी दवाम की कैद होती है। और मैंने आपको दवाम और जरूरत में फर्क भी बतलाया था कि एक चीज दूसरी चीज के लिए जरूरी होने का माना यह है कि यह उससे जुदा नहीं हो सकती, इसका उससे जुदा होना महाल है। जबकि दवाम का माना यह है कि एक चीज दूसरी चीज के साथ दाइमन है। इसमें फिर दोनों एहतमाल, जब दाइमन है तो हो सकता है जुदा होना ही मुमकिन ना हो और हो सकता है जुदा होना मुमकिन हो, तो इसमें दोनों सूरतें आ गई। और उसके बाद कल के सबक में आपने मुतलका आम्मा के बारे में भी पढ़ा था। भाई मुतलका आम्मा वो कजिया है जिसमें बिलफेल वाली जिहत मजकूर हो, और बिलफेल का क्या माना किया इन्होंने कि तीन जमानों में से किसी एक जमाने में महमूल का सबूत होगा मौजू के लिए। उसके बाद कल के सबक में मुमकिना आम्मा का बयान आया था जिसमें इमकान आम जिक्र होता है। मसलन मैं कहता हूं जैदुन काइमुन बिल इमकानिल आमी, तो इमकान आम किसे कहते हैं और इमकान खास किसे कहते हैं। मैंने आपको तफसील बतलाई थी कि इमकान आम का माना यह है जानिब मुखालिफ से जरूरत की नफी। यह आपने हमेशा याद रखना, यह बार बार इसकी जरूरत पेश आएगी। इमकान आम किसे कहते हैं, जानिब मुखालिफ से जरूरत की नफी। जबकि इमकान खास जो होता है उसमें दोनों जानिब से जरूरत की नफी होती है। देखो दो जानिबें हैं, एक है होना और एक है न होना। यूं कहो एक है ईजाब और एक है सल्ब। मसलन मैं कहता हूं जैदुन काइमुन, यह है ईजाब, और मैं कहता हूं जैदुन लैसा बिकाइमिन, यह क्या है, सल्ब है। तो ईजाब या सल्ब दो ही सूरतें होती हैं। तो इमकान खास का माना यह है दोनों जानिब से जरूरत की नफी, यानी जैद के लिए कयाम का होना भी मुमकिन और जैद के लिए कयाम का न होना भी मुमकिन। तो इमकान आम और इमकान खास में बयान कर रहा था। इमकान आम किसे कहते हैं, जानिब मुखालिफ से जरूरत की नफी, यानी अगर ईजाब जिक्र है तो जानिब मुखालिफ क्या, सल्ब, और अगर सल्ब जिक्र है तो जानिब मुखालिफ क्या, ईजाब। मसलन मैं कहता हूं जैदुन काइमुन बिल इमकानिल आमी, जैद का कियाम मुमकिन है। जैदुन काइमुन यानी जैद के लिए कियाम साबित है बिल इमकानिल आमी, इमकान आम के साथ, यानी यूं कहो जैद के लिए कियाम मुमकिन है, यानी यूं कहो जैद खड़ा हो सकता है, जैद कियाम कर सकता है। इसकी जानिब मुखालिफ क्या होगी, जैद का कयाम न करना, जैद का। तो इसमें देखो जैदुन कायमुन बिल इमकानिल आमी, इसमें कयाम जैद के लिए साबित है तो जानिब मुखालिफ होगी जैद के लिए कयाम का न होना। और क्या कहा था, जानिब मुखालिफ से जरूरत की नफी, तो जैद के लिए कयाम का न होना जरूरी नहीं, जैद के लिए कयाम का न होना जरूरी नहीं। तो बस आपने इस लफ्ज को हमेशा सामने रखना है, तो कुछ मश्क कर लेंगे इंशाल्लाह आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा कि इमकान आम में क्या होता है, जानिब मुखालिफ से जरूरत की नफी। मसलन मैं कहता हूं जैदुन कायमुन बिल इमकान इल आमी, तो ये ईजाब है या सल्ब है, ये ईजाब है। जानिब मुखालिफ क्या, जैद से कयाम की नफी, तो उसके से जरूरत की नफी कर दो। क्या माना, जैद के लिए कयाम का न होना जरूरी नहीं, जैद के लिए कयाम का न होना जरूरी नहीं। जब मैंने कहा जैद के लिए कयाम मुमकिन है तो माना क्या, जैद के लिए कयाम का न होना जरूरी नहीं। और अगर मैं नफी करूं जैद के लिए कयाम का न होना मुमकिन है, जैदुन लैसा बिकाइमिन बिल इमकानिल आमी, जैद के लिए कयाम का न होना मुमकिन है, तो मैं ईजाब जिक्र कर रहा हूं या सल्ब, सल्ब, जैद के लिए कयाम का न होना मुमकिन है। अब इसकी जानिब मुखालिफ ले आओ, जानिब मुखालिफ ईजाब आएगी, क्या माना, जैद के लिए कयाम का होना, जैद के लिए कयाम का होना जरूरी नहीं, जरूरत की नफी करो। मैंने क्या कहा, जैदुन लैसा बिकाइमिन बिल इमकानिल आमी, जैद के लिए कयाम नहीं है बिल इमकानिल आम, नफी है या ईजाब है? नफी है, तो नफी की जानिब मुखालिफ क्या? ईजाब। ईजाब ले आओ और उसकी जरूरत की नफी कर दो। जैद के लिए कियाम जरूरी नहीं। दूसरी मिसाल ले लें, अल इंसान हैवान उन बिल इमकान आमी, इंसान हैवान है बिल इमकान आम। जी अब इस जानिब मुखालिफ क्या?
इंसान का हैवान होना जरूरी नहीं।
नहीं समझ में आ रही बात, अभी तक इस जहन में नहीं आ रही। वही कजिए के अंदर जो महमूल है वही महमूल रखें, बस ईजाब की जगह नफी ले आए, और अगर नफी है तो उसकी जगह ईजाब ले आए। जैद उन कायम उन ईजाब है या नफी? तो इसकी नफी क्या होगी? जैद उन लैसा बिकायमीन। और अगर मैं कहूं जैद उन लैसा बिकायमीन तो उसके जानिब मुखालिफ क्या होगी? जैद उन कायमीन। तो बस ईजाब को नफी से बदल देना और साथ जरूरी नहीं ये कैद लगा देना, जरूरत की नफी है तो जरूरी नहीं। मैं कहता हूं जैद उन कायमन बिल इमकान आमी, जानिब मुखालिफ ले आओ, जैद उन कायमन बिल इमकान आमी। देखो आप सिर्फ ईजाब और नफी पे नजर रखो, बस बिल इमकान आम जैसे ही आएगा बस आपको इतना पता चल जाएगा जानिब मुखालिफ से जरूरत की नफी। जैद उन कायमन बिल इमकान आमी, क्या इसमें क्या जिक्र हो रहा है? ईजाब जिक्र है। इसका क्या माना? यानी जानिब मुखालिफ से जरूरत की नफी। जानिब मुखालिफ क्या? जैद के लिए कियाम न होना। जैद के लिए, तो जैद के लिए कियाम न होना साथ क्या लगा दो? जरूरी नहीं। जैद के लिए कियाम का न होना जरूरी नहीं। तो देखो मैं जब भी कहूं जैद उन कायमन बिल इमकान आमी और पूछूं इसका क्या माना, आप फौरन वो जानिब मुखालिफ से जरूरत की नफी कर दें। आप कहें इसका माना यह है जैद के लिए कियाम का न होना जरूरी नहीं। तवज्जो है? आप फिर दोहराओ, जैद उन कायमन बिल इमकान आमी, इसमें क्या बयान हुआ? जानिब मुखालिफ से जरूरत की नफी। वो बयान करो कि जैद के लिए कियाम का न होना जरूरी नहीं। तो मैंने तो सिर्फ ये कहा जैद उन कायमन बिल इमकान आम, लेकिन माना आप क्या कर रहे हैं इसका? जानिब मुखालिफ जरूरी नहीं। मैंने कहा जैद उन कायमन बिल इमकान आम, कोई आपसे पूछे इस कजिए में क्या बयान हो रहा है, तो आप यूं भी कह सकते हैं कि जैद के लिए कयाम मुमकिन है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि इसमें यह बयान हो रहा है कि जैद के लिए कयाम का न होना जरूरी नहीं है। जैद के लिए कयाम का न होना जरूरी नहीं है। आप दूसरी जानिब ले आओ, नफी वाली ले आओ। मैं कहता हूं जैद उन लैसा बिकायमीन बिल इमकान आमी, जैद उन लैसा बिकायमीन बिल इमकान आमी, इसमें क्या बयान हो रहा है? आसान लफ्जों में यूं कहो यहां जैद से कयाम की नफी मुमकिन है। क्या बयान हो रहा है? जैद उन लैसा बिकायमीन, जैद से कयाम की नफी की जा रही है बिल इमकान आमी, तो क्या कहेंगे? जैद से कयाम की नफी मुमकिन है। और दूसरे लफ्जों में आप क्या कह सकते हैं, यहां क्या बयान हो रहा है? जानिब मुखालिफ से जरूरत की नफी। जानिब मुखालिफ लाओ, जैद के लिए कियाम, इसमें है कियाम की नफी, उसमें होगा जैद के लिए कियाम। आप कहें इसमें यह जिक्र हो रहा है कि जैद के लिए कियाम जरूरी नहीं। तवज्जो है, बात समझ में आ रही है? मैं फिर दोहराएं, एक दफा फिर दोहरा लें। मैं कहता हूं जैद उन कायम उन बिल इमकान आमी, क्या बयान हो रहा है? जैद के लिए कियाम मुमकिन है। दूसरे लफ्जों में जानिब मुखालिफ से जरूरत की नफी करो, जैद के लिए कियाम का न होना जरूरी नहीं है। और मैं नफी वाला ले आता हूं, जैद उन लैसा बिकायमिन बिल इमकान आमी, इसमें क्या बयान हो रहा है? यह जैद के लिए कियाम न होना मुमकिन है। दूसरे लफ्जों में जानिब मुखालिफ जरूरी नहीं, क्या माना? यानी जैद के लिए कियाम जरूरी नहीं। बात समझ में आ गई? तो मुमकिन आमा जो होता है उसमें जानिब मुखालिफ से जरूरत की नफी होती है, और इमकान खास का क्या माना? दो जानिबैन से जरूरत की नफी। मसल मैं कहता हूं जैद उन कायमुन बिल इमकान खासी, जैद उन कायमुन जानिबैन से जरूरत की नफी कर दो, क्या माना? जैद के लिए कयाम का इस बात करो, जैद उन कायमुन बिल इमकान आमी, और जैद उन लैसा बिकायमीन बिल इमकान, जैद उन कायमुन बिल इमकान आमी जरूरत की नफी है जानिब मुखालिफ से, और ये ईजाब है, तो जानिब मुखालिफ क्या होगी? सल्ब। यानी जैद से कयाम की नफी जरूरी नहीं। तवज्जो नहीं है, तवज्जो नहीं है। इमकान खास उसमें दोनों जानिब से जरूरत की नफी होती है, दोनों जानिब से जरूरत की नफी। यानी यूं को आसान लफ्जों में जो इमकान खास जो होता है उसमें दो मुमकिन आम्मा होते हैं, امکان خاص میں دو ممکنہ عامہ ہوتے ہیں، ایک موجبہ ایک سالبہ. موجبہ ہوگا تو اس سے پتا چلے گا سلب ضروری نہیں، اور سالبہ ہوگا تو معلوم ہوا ایجاب ضروری نہیں. دیکھا دونوں سے ضرورت کی نفی ہو گئی. میں نے کہا زید قائم بالامکان الخاصی، کیا معنی؟ دو قضیہ بنا لو، ایک میں ایجاب رکھو ایک میں نفی رکھو، اور امکان خاص کی جگہ امکان عام لے آؤ. میں نے کیا کہا؟ زید قائم بالامکان الخاص، دونوں جانب سے ضرورت کی نفی کرنی ہے. سلب سے ضرورت کی نفی کس میں ہوتی ہے؟ ایجاب میں. اور ایجاب سے ضرورت کی نفی کس میں ہوتی ہے؟ سلب میں. تو دو قضیہ بنا لو، ایک میں ایجاب لے آؤ تو سلب سے ضرورت کی نفی ہو جائے گی، اور ایک میں سلب لے آؤ تو ایجاب سے ضرورت کی نفی ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زید قائم بالامکان الخاصی، اس میں کیا ہے؟ جانبین سے ضرورت کی نفی. معلوم ہو زید کے لیے قیام بھی ضروری نہیں، اور زید سے قیام کی نفی بھی ضروری نہیں. زید کے لیے قیام ضروری نہیں، اس کو ذکر کرو. زید کے لیے قیام ضروری نہیں. شاباش. زید لیس بقائم بالامکان العام. نفی والا لاؤ گے تو ایجاب سے ضرورت کی نفی ہوگی. تو کل میں بیان کر رہا تھا امکان عام اور امکان خاص کو. میں نے آپ کو بتایا امکان عام میں ضرورت کی نفی ہوتی ہے جانب مخالف سے، اور امکان خاص میں ضرورت کی نفی ہوتی ہے جانبین سے، یعنی دونوں جانب سے، ایجاب سے بھی ضرورت کی نفی اور سلب سے بھی ضرورت کی نفی. اور میں نے آپ کو نقشہ بنوایا تھا آپ سے، اور اس میں نے بتلایا تھا کہ چیزیں تین قسم پر ہیں، یا واجب، یا ممتنع، اور یا ممکن. ممکن اور واجب کو تعبیر کس سے کریں گے؟ یجیبو. تو باقی دونوں کیا ہوئے؟ لا یجیبو. اور ممتنع کو تعبیر کس سے کریں گے؟ یمتنعو. تو باقی دونوں کیا ہوئے؟ لا یمتنعو. تو معلوم ہوا جو ممکن نیچے ذکر ہوا اس کے ساتھ لا یجیبو بھی آ گیا اور لا یمتنعو بھی. اور لا یجیبو لا یمتنعو یہ تو ممکن خاص میں ہوتا ہے. معلوم ہوا یہ ممکن جو ذکر ہے نقشے میں، یہ کیا مراد ہے اس سے؟ ممکن خاص. اور اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ لا یجیبو لا یمتنعو. لا یجیبو اس کا ہونا ضروری نہیں، اور لا یمتنعو اس کا نہ ہونا ضروری نہیں. تو اس کا ہونا بھی ضروری نہیں اور نہ ہونا بھی ضروری نہیں. تو امکان عام میں نے بتایا تھا دو قسم پر ہے، ایک امکان عام مقید بجانب الوجود، اور ایک امکان عام مقید بجانب العدم. امکان عام مقید بجانب الوجود اس میں ہونا ذکر ہوتا ہے. وجود کا کیا معنی؟ ہونا. اور عدم کا کیا معنی؟ نہ ہونا. تو امکان عام مقید بجانب الوجود اس میں ہونا ذکر ہوتا ہے، اور ہونا قضیہ موجبہ میں ہوتا ہے یا سالبہ میں؟ موجبہ میں. اس لیے یہ موجبہ میں آئے گا. تو جب موجبہ میں امکان عام آ جائے تو آپ سمجھ جائیں امکان عام مقید بجانب الوجود ہے، اور اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ لا یمتنعو سے. اور لا یمتنعو کے اندر واجب بھی داخل اور ممکن خاص بھی داخل. اور امکان عام بجانب العدم اس میں نہ ہونا ذکر ہوگا، اور نہ ہونا کس میں ہوتا ہے؟ کون سے قضیے میں؟ سالبہ میں. تو غزیہ سالبہ میں جب امکان عام آئے تو وہ امکان عام مقید بجانب العدم ہوتا ہے. اور اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ لا یجیبو سے. اور لا یجیبو دو کے ساتھ آیا تھا، ایک ممتنع کے ساتھ اور ایک ممکن خاص کے ساتھ. تو اس میں دونوں داخل ہو گئے، ممکن خاص بھی اور ممتنع بھی. آئیے اب بھائی دیکھیے کتاب پر، متن دیکھیے بھائی. او بعدمی ضرورت خلافیہا. میں نے بتلایا تھا یہ خلافیہا کہ ہا ضمیر نسبت کو راجع ہے. اے بعدمی ضرورت خلافی نسبتی، یعنی نسبت کے خلاف ضروری نہیں. ترجمہ آخر سے کر رہا ہوں. بعدمی ضرورت خلافیہا، نسبت کا خلاف ضروری نہیں، یعنی نسبت کی جانب مخالف ضروری نہیں. اور پچھلی عبارت کے ساتھ جوڑیں بھائی، کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا، اگر قضیے کے اندر یہ حکم ہو، کون سا حکم؟ بِعَدَمِ ضرورتِ خِلَافِهَا، کہ اس نسبت کے جانب مخالف ضروری نہیں ہے. فَمُمْكِنَةٌ عَامَّةٌ، تو اس کو ممکنہ عامہ کہتے ہیں. ممکنہ عامہ، تو ممکنہ عامہ میں کیا ہوتا ہے؟ جانب مخالف سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے. تو اب آپ کو پتا چل گیا کہ امکان عام موجبہ میں ذکر ہو तो सलब से जरूरत की नफी, और इम्कान आम सालिबा में जिक्र हो तो ईजाब से जरूरत की नफी होती है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ईजाब की जानिब मुखालिफ क्या सलब, और सलब की जानिब मुखालिफ क्या ईजाब। और एक दो मिसालें कर लें ताकि बात और खूब वाजे हो जाए। मैंने कहा अल इंसानु हैवानुन बिल इम्कानिल आमी, मुजिबा है सालिबा है मुजिबा है। और मैं कहता हूं अल इंसानु लैसा बिहजरिन बिल इम्कानिल आमी, मुजिबा है सालिबा है सालिबा है। अब मुझे बताइए अल इंसानु हैवानुन बिल इम्कानिल आमी ये क्या है? मुजिबा। तो जानिब मुखालिफ से जरूरत की नफी करो। बस उर्दू में बताओ, उर्दू में इंसान का हैवान ना होना, इंसान का ना होना जरूरी नहीं। फिर सुनो अल इंसानु हैवानुन बेजरूरती, मैं पूछूं इसमें क्या बयान हुआ, आपने फौरन जानिब मुखालिफ से जरूरत की नफी को जिक्र करना है। अल इंसानु हैवानुन बिल इम्कानिल आमी जी, इसमें क्या जिक्र हुआ वो बयान करो, जानिब मुखालिफ बयान करो। इंसान का हैवान न होना जरूरी नहीं। फिर सुनो अल इंसान हैवान बिल इम्कानिल आमी, इसमें क्या जिक्र हुआ इंसान का हैवान न होना जरूरी नहीं। अब मैं सालिबा लाऊंगा अल इंसान लैसा बिहजरिन बिल इम्कानिल आमी जी, इसमें क्या बयान हुआ इंसान का पत्थर होना, मुजिबा लाओ इंसान का पत्थर होना जरूरी नहीं। तरीका समझ में आ गया? मैंने आपको इसकी मिसालें भी लिखवाई थी, मुमकिन आम्मा की मिसाल सामने रखें भाई, वो जो पहले एक दिन पहले मैंने आपको मिसालें लिखवाई थी, तमाम बसीता कजियों की मिसालें भाई जी, मुमकिन आम्मा की मिसाल है जी, मुमकिन आम्मा की मिसाल आपको मैंने लिखवाई थी, कुल्लु नारिन हारतुन बिल इम्कानिल आमी, तवज्जो है? अब पता चलेगा आपको बात समझ में आई है या नहीं। कुल्लु नारिन हारतुन, हर आग गर्म होती है बिल इम्कानिल आमी, किसके साथ? इम्काने आम के साथ, यानी हर आग का गर्म होना मुमकिन है, हर आग का गर्म होना मुमकिन है जी। अब मुझे बताइए इस कजिए में क्या बयान हो रहा है, जानिब मुखालिफ से जरूरत की नफी करो, हर आग का गरम न होना जरूरी नहीं है। बात समझ में आ गई? शाबाश। आगे कजिया सालिबा में आओ, लाशई अमीन नारी बी बारिदिन बिल इम्कानिल आमी, कोई भी आग ठंडी नहीं है बिल इम्कानिल आमी, इसमें क्या बयान हुआ? पहले आसान लफ्जों में बयान करो सीधा सीधा इसी को, कोई भी आग ठंडी ना हो ये मुमकिन है, कोई भी आग ठंडी ना हो ये तमाम, हर आग से नफी हो रही है ना, कोई भी आग ठंडी ना हो ये मुमकिन है जी। अब बताइए इसमें क्या बयान हुआ, कुल लाशई अमीन नारी भी बारी दिन बिल इम्कानिल आमी, जानेब मुखालिफ ले आओ, हाँ ठंडे को ठंडा ही रखो, उसको ना बदलो फिलहाल, वो बाद में आप करना, हाँ वह लाश नफी है लाश ही, आप ईजाब ले आओ, हर आग का ठंडा होना जरूरी नहीं, यूं कहो किसी आग का ठंडा होना जरूरी नहीं। बात समझ में आ गई? यह है जानिब मुखालिफ से जरूरत की नफी है भाई। अच्छा देखिए भाई किताब पर, तो कहते हैं औ बिआदमी जरूरत खिलाफिहा फमुमकिनतुन आम्मतुन, अगर कजिए के अंदर यह हुक्म हो कि इस निस्बत की जानिब मुखालिफ जरूरी नहीं है तो वो मुमकिन आम्मा है, फहादिही बसाइतु, ये बसाइत हैं, ये कजिए ये मुज्जहात बसाइत हैं जो अभी तक बयान हुए। कौन कौन से थे? नंबर एक जरूरिया मुतलका, नंबर दो मशरूता आम्मा, नंबर तीन वक्तिया मुतलका, नंबर चार मुंतशिरा मुतलका, इन सब में भी जरूरत की कैद थी। और अगले दो कौन से हैं? दायमा मुतलका और उर्फिया आम्मा, इनमें दवाम की कैद होगी, कभी दवाम जाती होगा और कभी वस्फी। और उससे अगली किस्म मुतलका आम्मा, उसमें कौन सी जिहत होगी? बिल फेल वाली। और आखिरी आज आपने क्या पढ़ा? मुमकिन आम्मा, इसमें कौन सी जिहत होगी? बिल इम्कान आम। और इम्कान आम का क्या माना? جانب مخالف سے ضرورت کی نفی, اور امکان خاص کا کیا معنی؟ جانبین سے ضرورت کی نفی. تو یہ ہے سار, تو کہتے ہیں فہادہ بصائط, یہ سب موجہات بصائط ہیں. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی, اب آئیے شرح میں. بھائی قوله او بعدم ضرورتی آہ لکھا ہوا ہے, میں نے بتایا تھا یہ آہ کس کا مخفف ہے, الى آخری ہی, اور کبھی یہی آہ مخفف ہوتا ہے انتہا کا, جہاں بات پوری ہو جائے وہاں بھی آہ لکھ دیتے ہیں. معنی کیا ہے؟ انتہا, یعنی یہ بات یہاں پر پوری ہو گئی. اور کبھی یہ الى آخری ہی کے معنی میں ہوتا ہے کہ ہم نے تھوڑا سا ذکر کر دیا, باقی آخر تک آپ خود پڑھ لیں. یعنی ہم نے ماتین کا قول او بعدم ضرورت جو ہے اس کو تھوڑا سا ذکر کر دیا, باقی آخر تک آپ دیکھ لیں اوپر متن میں. تو مصنف کا قول او بعدم ضرورت الى آخری ہی, کہتے ہیں اذا حکم فی القضیت بان خلاف نسبت المذکورت فیہا لیس ضروریا, جب یہ حکم ہو فی القضیت قضیہ کے اندر کہ بان خلاف نسبت المذکورت فیہا کہ وہ نسبت جو اس قضیے میں مذکور ہے اس کا خلاف یعنی اس کی جانب مخالف, لیس ضروریا ضروری نہیں, یعنی جب قضیے میں کیا حکم ہو کہ یہ جو نسبت قضیے میں ذکر ہے اس کی جانب مخالف ضروری نہیں. کہتے ہیں اذا حکم فی القضیت بان خلاف نسبت المذکورت فیہا لیس ضروریا, جب قضیے میں یہ حکم ہو کہ یہ قضیے کے اندر جو نسبت مذکور ہے اس کی جانب مخالف ضروری نہیں ہے, نحو قولنا جیسے ہمارا یہ قول زید کاتب بالامکان العامی, زید کاتب بالامکان العامی, جی آسان لفظوں میں بتاؤ اس میں کیا بیان ہوا؟ نہیں جانب مخالف کو بھی نہیں, عام لفظوں میں, عام لفظوں میں زید کے لیے کاتب ہونا ممکن ہے, اس میں کیا بیان ہوا؟ جب زید کے لیے کاتب ہونا ممکن ہے معلوم ہوا زید کے لیے کاتب ہونا محال نہیں ہے, زید کے لیے کاتب ہونا محال نہیں ہے, یہی بیان کر رہے ہیں. بمعنی ان الکتابت غیر مستحیلت لہو, بمعنی کہ کتابت جو ہے وہ غیر محال ہے, لہو کس کے لیے؟ یعنی محال نہیں ہے. جب کہہ دیا زید کے لیے کتابت ممکن ہے تو کیا مانا؟ زید کے لیے کتابت محال نہیں ہے, یہی بیان کر رہے ہیں. بمعنی ان الکتابت غیر مستحیلت لہو, بئی مانا کی کتابت جو ہے زید کے لیے محال نہیں ہے, یعنی ان سلبہ عنہ لیس ضروریا, کیا مانا؟ اب وہ مانا کرو جو میں نے بیان کیا, زید کاتب بالامکان العامی, کیا بیان ہوا اس میں؟ جانب مخالف سے ضرورت کی نفی کرو, یوں کہو زید سے کتابت کا سلب ضروری نہیں, یہی بیان کر رہے ہیں. یعنی ان سلبہ عنہ لیس ضروریا, یعنی زید سے کتابت کا سلب لیس ضروریا, ضروری نہیں ہے. تو سمیت القضیت حینئذ ممکنتن, تو اس وقت قضیے کو ممکنہ کہتے ہیں, یعنی جب قضیے میں یہ ذکر ہو, پیچھے آیا تھا اذا حکم فی القضیت, جب قضیے میں یہ حکم ذکر ہو کہ بان خلاف نسبت المذکورت فیہا لیس ضروریا, کہ قضیے کے اندر مذکورہ نسبت جو ہے اس کا خلاف ضروری نہیں, تو سمیت القضیت حینئذ ممکنتن, تو اس وقت قضیے کو ممکنہ کہتے ہیں جب یہ حکم اس میں ذکر ہو. ممکنہ کہتے ہیں کیوں؟ لاشتمالها علی الامکانی, کیونکہ یہ قضیہ مشتمل ہے کس پر؟ امکان کی جہت پر. وہ ہوا, اور امکان کسے کہتے ہیں؟ وہ ہوا سلب الضرورتی, وہ سلب ضرورت کو کہتے ہیں. وہ ہوا سلب الضرورتی, وہ ضرورت کے سلب کو کہتے ہیں. از ضرورت آیا, ہر ضرورت کا سلب یا جانب مخالف کی ضرورت کا سلب؟ تو یہ از ضرورت کے اشارہ کر دیا وہ کہ وہ والی ضرورت کا سلب کون سی؟ جانب مخالف. یا یوں کہیں از ضرورت پر الف لام عوض ہے مضافلے سے, کس سے عوض ہے؟ مضافلے سے. ای ہوا سلب ضرورت الجانب المخالف, جانب مخالف کی ضرورت کا سلب. اس کو ممکنہ کہتے ہیں لاشتمالها علی الامکان, اس وجہ سے کہ مشتمل ہے امکان پر. وہ ہوا سلب الضرورتی, मेरी किताब में है ले सलब जरूर, लाम है, यह किताबत की गलती है भाई, लाम नहीं, सलब जरूरत, यूं कर लें, वह हुआ लिसलब जरूरत ही। और इम्कान किस लिए होता है? सलब जरूरत, यानी जानिब मुखालिफ से जरूरत की नफी। यह यूं पढ़ लें, बाकी किताबों में लाम नहीं है। वह हुआ सलब जरूरत ही, और इम्कान जो है वो जरूरत का सलब है। कौन सी जरूरत का सलब? जानिब मुखालिफ की जरूरत का सलब। वह आम मतन, और इस कजिए को आम्मा कहते हैं, लिकौ निहा आम्मा मिनल मुमकिन तिल खासती, इस वजह से कि यह ज्यादा आम है मुमकिन खासा के मुकाबले में। यह किसके मुकाबले में ज्यादा आम है? भाई मुमकिन खासा, उसमें दोनों जानिब से जरूरत की नफी होती है, और इसमें एक जानिब से जरूरत की नफी, तो जाहिर सी बात है यह आम हुआ और वह अखस। मैंने आपको बतलाया था कि जितनी कैदें बढ़ती जाएं चीज खास होती चली जाती है। जैसे दुनिया में मैंने बताया था, मसलन फर्ज कर लें 1 करोड़ गुलाम हैं, मैं लफ्ज गुलाम बोलूंगा तो ये उनमें से हर एक पर सादिक आ सकता है कि ये भी गुलाम है, ये भी गुलाम है, ये भी गुलाम है, हर गुलाम पर ये लफ्ज बोला जा सकता है, तो इसमें 1 करोड़ इहतमाल। लेकिन इसके साथ मैं एक कैद बढ़ा देता हूं, गुलाम उन सालेहुन, नेक गुलाम, तो अब नेक तो फर्ज करो उनमें सिर्फ 1 लाख हैं, तो अब ये कितने पर सादिक आएगा? 1 लाख पर। देखो कैद बढ़ा दी तो तफसीस आ गई, इहतमालात कम हो गए। मैं एक और कैद बढ़ा देता हूं कि गुलाम उन सालेहुन कातिबुन, गुलाम सालेह भी हो और कातिब भी हो, यानी लिखना भी जानता हो, तो लिखने वाले तो फर्ज करो उनमें से सिर्फ 50,000 हैं, तो देखो और अफराद कम हो गए। तो जितनी कैदें बढ़ती जाएंगी चीज में तख्सीस पैदा होती जाती है, उसके इहतमालात कम होते हैं। ये यूं कहें, अगर अफराद हैं तो उसके अफराद कम होते जाते हैं। तो इम्कान आम में एक कैद होती है, जानिब मुखालिफ से जरूरत की नफी, और इम्कान खास में 2 कैदें होती हैं, जानिब मुखालिफ से भी जरूरत की नफी और जानिब मुवाफिक से भी जरूरत की नफी, यानी ईजाब से भी जरूरत की नफी और सल्ब से भी जरूरत की नफी। तो उसमें 2 कैदें आ गईं, और इम्कान आम में 1 कैद है, और जाहिर सी बात है जिसमें 2 कैदें हों वो ज्यादा खास होगा किसके मुकाबले में? जिसमें 1 कैद हो। तो कहते हैं वह आम मतन, और इस मुमकिना को आम्मा कहते हैं, लिकौ निहा आम मिनल मुमकिन तिल खासती, इस वजह से कि यह ज्यादा आम है मुमकिना खासा से। कौलुहू फहादिही बसाइतु, मुसन्निफ का कौल फहादिही बसाइत अल कजाया समानियतुल मस्कूरतु मिन जुमलतिल मुअज्जहाति बसाइतु, यानी ये 8 कजिए जो जिक्र किए गए, मिन जुमलतिल मुअज्जहात, जुमला मुअज्जहात में से, जुमला मुअज्जहात यानी तमाम मुअज्जहात में से ये जो 8 कजिए जिक्र किए गए, बसाइतु, ये क्या हैं? बसाइत यानी अभी तक जो हमने 8 पढ़े। एलम, जान ले तू, अन अल कजायल मुआजहा, यहां कजाय मुआजहा कह लें, यह आम किताबों में है, अन अल कजियतल मुअज्जहा। भाई मैंने आपको बताया था कजिया मुअज्जहा बसीता किसको कहते हैं? जिसमें सिर्फ ईजाब हो या सिर्फ सल्ब हो। और कजिया मुअज्जहा मुरक्कबा वो है जिसमें एक ही कजिए में ईजाब भी होगा और सल्ब भी होगा। मुरक्कबात को यही समझ लें भाई, मुरक्कबात वो मुअज्जहात है जिनमें एक ही कजिए में ईजाब भी जिक्र होता है और सल्ब भी जिक्र होता है। भाई होता यूं है कि बाज़ औकात एक कजिया जिक्र किया जाता है तो फिर भी एहतमाल रहता है कि शायद सुनने वाले पर बात पूरी वाज़ह न हुई हो, वो बात को पूरी तरह समझा ना हो, लिहाजा उसके साथ एक और कजिए को भी जिक्र कर दिया जाता है उसके साथ, ताकि बात उसको पूरी तरह समझ में आ जाए, बात उसके लिए पूरी तरह वाज़ह हो जाए। तवज्जो है, बाज़ औकात एक कजिया मुअज्जहा जिक्र किया जाता है और फिर भी एहतमाल रहता है कि शायद सुनने वाले को बात पूरी समझ में ना आए, पूरी शायद वजाहत ना हो सके, तो उसके साथ एक और कजिए को भी साथ मिलाकर जिक्र कर दिया जाता है ताकि उसकी समझ में बात पूरी तरह अच्छी तरह उसकी समझ में यह बात आ जाए। तो ये मुरक्कबात हैं जिसमें एक कजिए के अंदर दूसरा भी कजिया वो जिक्र कर देते हैं। क्यों जिक्र करते हैं? क्योंकि एक कजिए से हो सकता है सुनने वाले को بات پوری سمجھ میں نہ آئے, پوری وضاحت نہ ہو, ہو سکتا ہے وہ پوری طرح مطمئن نہ ہو, تو آگے ایک اور قضیہ لا کر خوب وضاحت کر دی جاتی ہے بات کی. ان کو موجہات مرکبہ کہتے ہیں, اور یہ سات ہیں بھائی, سات. اچھا, تو دو قضیے ذکر کیے جاتے ہیں, لیکن یاد رکھنا دونوں قضیے پورے پورے نہیں ذکر کیے جاتے, ایک قضیہ پورا ہوتا ہے اور دوسرے قضیے کی طرف صرف اشارہ کر دیا جاتا ہے. کیونکہ اگر دونوں قضیے پورے پورے ذکر کر دیں گے پھر تو یہ دو قضیے ہو جائیں گے, پھر تو دو قضیے, لہذا ایک قضیہ پورا ذکر کیا جاتا ہے اور دوسرے کی طرف لا دوام یا لا ضرورت کے ذریعے صرف اشارہ کر دیا جاتا ہے. تو قضیہ مرکبہ وہ ہوگا جس میں ایک قضیہ تو پورا ذکر ہوگا اور دوسرے قضیے کی طرف لا ضرورت یا لا دوام کے ذریعے اشارہ کر دیا جائے گا. توجہ ہے؟ قضایا موجہہ مرکبہ کن کو کہتے ہیں؟ کہ ایک ہی قضیہ کے اندر ایجاب بھی ہو اور سلب بھی ہو. اور یہ کیوں لے کر آتے ہیں؟ کہ ہو سکتا ہے سننے والے کو, پڑھنے والے کو اس کی پوری تسلی نہ ہو, اس کو پوری بات سمجھ میں نہ آئی ہو, تو ایک قضیہ کے ساتھ پھر دوسرا قضیہ بھی ذکر کر دیتے ہیں تاکہ بات خوب واضح ہو جائے, کسی قسم کا شک اور شبہ باقی نہ رہے. اور یہ جو دوسرے کو ذکر کرتے ہیں اس کو صرف اشارتاً ذکر کرتے ہیں, پہلے کو پورا ذکر کرتے ہیں اور دوسرے کو اشارتاً, اس لیے کیونکہ اگر دوسرے کو بھی پورا ذکر کر دیں گے پھر تو یہ دو قضیے بن جائیں گے, قضیہ ایک ہی ہونا چاہیے, البتہ اس میں دوسرے قضیے کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے. اور اشارہ پھر جو ہے وہ لا دوام اور لا ضرورت کے ذریعے کرتے ہیں. کس کے ذریعے اشارہ کرتے ہیں؟ لا دوام اور لا ضرورت کے ذریعے. اور یاد رکھو لا دوام کے ذریعے اشارہ کرتے ہیں مطلقہ عامہ کی طرف. مطلقہ عامہ میں کیا تھا؟ ایک چیز کا ثبوت ہے دوسری چیز کے لیے, یا ایک چیز کی نفی ہے دوسری چیز سے, تین زمانوں میں سے ایک زمانے میں. تو لا دوام کا بھی یہی معنی, دائمی نہیں ہے, یعنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہے. توجہ ہے؟ لا دوام کا کیا معنی؟ دائمی نہیں ہے. جب دائمی نہیں ہے معلوم ہوا تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہے. تو لا دوام کے ذریعے اشارہ ہوگا کس کی طرف؟ مطلقہ عامہ. دیکھو ایک قضیہ ذکر ہوگا اس کے آخر میں لا دوام آ جائے گا یا لا دائمن آ جائے گا, باقی آپ نے خود سمجھ جانا ہے. یہ جو لا دوام یا لا دائمن آیا اس کے ذریعے اشارہ ہے کس کی طرف؟ مطلقہ عامہ کی طرف. کس کی طرف؟ مطلقہ عامہ کون سا تھا جس میں کون سی جہت تھی؟ بالفعل والی, یعنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں. اور معنی میں غور کر رہے ہیں آپ کو ویسے بھی سمجھ میں آ جائے گا لا دوام کا کیا معنی. ایک چیز دائمن نہیں, ہمیشہ نہیں, جب ہمیشہ نہیں ہے معلوم ہوا تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہے. تو تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہے. تو لا دوام کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہوگا؟ مطلقہ عامہ. یہ اب سب میں آئے گا, خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. وہاں صرف لا دوام کہیں گے, آپ نے پھر پورا قضیہ بنانا ہے اس سے, وہ صرف لا دوام کہہ کے آگے چلے جائیں گے. آپ نے اس قضیے کو پورا بنا کر دکھانا ہے کہ کون سا مطلقہ عامہ یہاں کیسے نکل رہا ہے. تو لا دوام کے ذریعے ہمیشہ اشارہ ہوگا کس کی طرف؟ مطلقہ عامہ کی طرف. اور لا ضرورت کے ذریعے اشارہ ہوگا ممکنہ عامہ کی طرف, جو ابھی ہم نے پڑھا. لا ضرورت, لا ضرورت کیا معنی؟ ضروری نہیں, ضروری نہیں تو معنی کیا ہے؟ ممکن ہے. جب ضروری نہیں ہے تو پھر ممکن ہے, کیونکہ یہ اس کے مقابل ہے, اس کی نقیض ہے. تو قضیہ مرکبہ جو ہے اس کے اندر لا دوام یا لا ضرورت کی قید آئے گی, اور لا دوام کے ذریعے اشارہ کس کی طرف ہوگا؟ مطلقہ عامہ کی طرف. اور لا ضرورت کے ذریعے اشارہ کس کی طرف ہوگا؟ ممکنہ عامہ کی طرف اشارہ ہوگا. آگے دیکھیے مثالیں بھی آ جائیں گی تو خوب بات اچھی طرح واضح ہو جائے گی. تو کہتے ہیں اے علم, تو جان لے, ان القضایا المواجہتا, یا یوں پڑھ لیں اے علم ان القضیت الموجہتا. اکثر کتابوں میں قضیت الموجہہ ہے بھائی. تو جان لے کہ قضیہ موجہہ جو ہے اما بسیطتن, یا تو وہ بسیطہ ہوگا. بسیطہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں صرف ایجاب ہو یا صرف سلب ہو, وہی بیان کرنے لگے. وہیا, اور یہ وہ قضیہ ہے, ما یکون حقیقتها اما ایجابا فقط او سلبا فقط, کہ جس کی حقیقت صرف ایجاب ہو یا صرف سلب ہو. کما مر فی الموجہات السمانیتی, جیسے کہ گزرا ہے ان آٹھ موجہات میں, ان سب میں یا تو صرف ایجاب ہوتا تھا یا صرف سلب ہوتا تھا, دونوں نہیں تھے. वह इमां मुरक्कबतुन, कजिया मुअज्जहा ये इबारत जोड़ें भाई, अलकजियतुल मुअज्जहतु इमां बसीतातुन व इमां मुरक्कबतुन, कजिया मुअज्जहा या तो बसीता होगा या मुरक्कबा, वही अल्लती तकूनु हकीकतुहा मुरक्कबतम मिन इजाबिन व सलबिन, और ये वो कजिया है जिसकी हकीकत मुरक्कब हो ईजाब और सल्ब दोनों से, बिशर्ती अल्ला यकून अलजुज उसानी फीहा मस्कूरन बिइबारतिन मुस्तकिल्लतिन। मैंने आपको बताया कि मुअज्जहा मुरक्कबा के अंदर ईजाब भी होगा और सल्ब भी, यानी दो कजिए होंगे, लेकिन दूसरा सराहतन नहीं होगा बल्कि उसकी तरफ सिर्फ इशारा होगा। अगर दूसरा मुस्तकिलन हुआ फिर तो कितने कजिए बन जाएंगे, दो बन जाएंगे। यही बयान कर रहे हैं, कहते हैं बिशर्ती अल्ला यकून अल जुज उसानी फीहा मस्कूरन बि इबारतिन मुस्तकिलतिन, बाई शर्त के जुजे सानी इसके अंदर मुस्तकिल इबारत के साथ मस्कूर ना हो, यानी पूरा मस्कूर ना हो। सवा उनका नफिल लफ्ज तरकीब उन, बराबर है कि लफ्जों में तरकीब हो। जी ये भी समझ लें, इधर देखिए, मैंने बताया कजिया मुरक्कबा में क्या होगा, एक कजिया पूरा होगा और दूसरे की तरफ इशारा कर दिया जाएगा, तो गोया लफ्जों में भी तरकीब आ गई, लफ्जों में भी एक कजिया पूरा है और दूसरे की तरफ इशारा, तो ये दोनों चीजें होंगी वहां, एक मुस्तकिल कजिया होगा और दूसरे की तरफ इशारा, लफ्जों में दोनों होंगे, यानी ला दाइमन और ला जरूरत की कैद वहां मौजूद होगी, या यूं कहें ला दवाम और ला जरूरत की कैद वहां मौजूद होगी, जबकि बाज औकात ला दवाम और ला जरूरत भी नहीं होगा, लेकिन आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि ये दो कजिए हैं और वो सिर्फ मुमकिना खासा में है। मुमकिना खासा भी मैंने बताया था, जैदुन कायमुन बिल इमकानिल खासी, क्या माना, जैदुन कायमुन बिल इमकानिल खासी, इमकान खास का क्या माना था, जानिबैन से जरूरत की नफी, ईजाब से भी जरूरत की नफी और सल्ब से भी जरूरत की नफी, तो गोया ये दो कजिए हैं, जैदुन कायमुन बिल इमकानिल खासी, ये दरअसल कितने कजिए हैं, लफ्जों में तो एक ही कजिया लग रहा है, लफ्जों में तो तरकीब नहीं, दूसरे की तरफ इशारा नहीं, लेकिन हकीकत में ये कितने हैं, दो मुमकिना आम्मा हैं, एक में ईजाब है तो एक में सल्ब, गोया जब मैंने यूं कहा जैदुन कायमुन बिल इमकानिल खासी, तो गोया मैं यूं कह रहा हूं जैदुन कायमुन बिल इमकानिल आमी व जैदुन लैसा बिकायमिन बिल इमकानिल आमी, बात समझ में आती, जैदुन कायमुन बिल इमकानिल आमी व जैदुन लैसा बिकायमिन बिल इमकानिल आमी, तो ये दो कजिए हैं। तो देखा जैदुन कायमुन बिल इमकानिल खासी, लफ्जों में तरकीब नहीं है, लफ्जों में तो एक ही कजिया है, ला दवाम की कैद है, ला जरूरत की कैद है नहीं, लफ्जों में तो तरकीब नहीं है कि दूसरे कजिया की तरफ भी इशारा किया जा रहा हो, लेकिन माना के एतबार से, हकीकत के एतबार से ये कितने कजिए हैं, दो कजिए हैं, तो कभी लफ्जों में तरकीब होगी यानी दूसरे की तरफ ला दाइमन और ला जरूरत के जरिए इशारा होगा, और कभी इशारा नहीं होगा, और वह सिर्फ किस में होता है, मुमकिना खासा में। तो कहते हैं बिशर्ती अल्ला यकून अल जुज उसानी फीहा मस्कूरन बि इबारतिन मुस्तकिलतिन, बाई शर्त के दूसरे सानी जो है यानी दूसरे कजिया जो है उसमें इबारत मुस्तकिल्ला के साथ मस्कूर न हो। समा उनका नफिल लफ्ज तरकीब उन, बराबर है कि लफ्जों में तरकीब हो, आगे डेढ़ सतर बाद आ रहा है, और लम यकुन फिल लफ्ज तरकीब उन, या लफ्जों में तरकीब न हो, तरकीब की सूरत भी बता रहे हैं, तरकीब वाली सूरत में ला दाइमन या ला जरूरत की कैद आएगी, और जिसमें तरकीब नहीं है उसमें इमकान खास को वो जिक्र करेंगे। का कौलीना, जैसे हमारा कौल जो है कुल्लो इंसान जाहिकुन बिलफेली ला दाइमन, कि हर इंसान जाहिक है बिलफेल ला दाइमन, देखा ला दाइमन के जरिए इशारा किसकी तरफ किया, ला दाइमन के जरिए मुतलका आम्मा की तरफ इशारा किया, किसकी तरफ, ला जरूरत के जरिए किसकी तरफ इशारा होता है, मुमकिन आम्मा, फिर दोहराओ, इधर देखिए ला दवाम के जरिए किसकी तरफ इशारा होता है, मुतलका आम्मा, और ला जरूरत के जरिए मुमकिन आम्मा। मुतलका आम्मा में कौन सी कैद होती है, कौन सी जिहत होती है, बिलफेल, और मुमकिन आम्मा में कौन सी जिहत होती है, बिल इमकानिल आम्मी, बात समझ में आ रही है। अच्छा अब जरा आप इससे बना लें भाई, कुल्लो इंसान इन जाहिकुन बिल फेली, हर इंसान साहिक है बिलफेल, यानी तीन जमानों में से किसी एक जमाने में। यह एक कजिया ला दाइमन। अब यह ला दाइमन से आप पूरा कजिया फिर बनाओ, यहां बनाओ, तरीका सुन लो, तरीका सुन लो कैसे बनाना है ला दाइमन से। यही कजिया जो पीछे जिक्र है, अगर माकबल में मुजिबा हो तो आपने सालिबा निकालना है, तवज्जो है, माकबल में मुजिबा हो तो आपने ला दाइमन से क्या निकालना है, सालिबा, सालिबा, तो कैफियत को बदल देना है, वो मुजिबा था तो ये सालिबा, और अगर वो सालिबा हो तो आपने क्या निकालना है, मुजिबा निकालना है, कैफियत को बदलना है लेकिन मिकदार को नहीं बदलना। यानी अगर वो कुल्ली है तो आपने भी कुल्ली बनाना है, अगर वो जुजी है तो आपने भी जुजी, कुल्ली यानी जिसमें कुल का जिक्र हो और जुजी जिसमें बाज का जिक्र हो। अगर कजिए में कुल का जिक्र है तो आप जो कजिया बनाएंगे उसमें भी किसका जिक्र होना चाहिए, कुल का, और अगर उसमें बाज का जिक्र था तो आपने भी जो कजिया बनाना है उसमें बाज का जिक्र होना चाहिए। तो ला दायमन के जरिए इशारा किसकी तरफ होगा, मुतलक आमा, और ला जरूरत के जरिए इशारा किसकी तरफ होगा, मुमकिन आमा। तो ये जो आप कजिया बनाएंगे इससे वही लफ्ज जो माकबल में होंगे उन्हीं की मदद से आपने कजिया बनाना है, लेकिन अगर माकबल में ईजाब है तो आपने क्या निकालना है, सल्ब, और अगर माकबल में सल्ब है तो आपने ईजाब बनाना है, और मिकदार वही रखनी है। अगर वो कुल्ली है उसमें कुल की बात हो रही है तो आपने भी कुल्ली कजिया बनाना है, और अगर वो जुजी है तो आपने भी जुजी बनाना है। देखो एक दो मिसालें कर लेंगे, आप कहेंगे ये तो बिल्कुल आसान है। कुल्लो इंसान इन जाहिक उन बिल फेल, हर इंसान जाहिक बिल फेल है। जी ये कौन सा कजिया, पहले तो मुझे ये बताएं, ला दाइमन को जरा छोड़ दें। कुल्लो इंसान इन जाहिक उन बिल फेल, मुजिबा तो है, मुजिबा तो है, ये आठ मुअज्जहात में से कौन सा है। ला दाइमन को जरा छोड़ दो, ला दाइमन को मिलाओगे तो मुरक्कबा बन जाएगा, उसके बगैर देखो कुल्लो इंसान इन जाहिक उन बिल फेल मुतलक आम्मा है, शाबाश। और ला दाइमन के जरिए इशारा भी किसकी तरफ, मुतलक आम्मा की तरफ, लेकिन माकबल में ईजाब है या सल्ब है, ईजाब, तो आपने ला दाइमन के जरिए सल्ब वाला निकालना है। अब इसी में सल्ब बनाइए भाई, इसमें हर इंसान के लिए ज़हक को साबित किया गया है
जी।
हर इंसान के लिए जी। तो आपने हर इंसान से ज़हक की नफी करनी है जी, बोलिए। हां कुल्लू क्यों कह रहे हो, कुल्लू तो ईजाब में आता है, ला शैया, ला शैया, ला शैया मिनल इंसानी बेज़ाहिकिन, ला शैया मिनल इंसानी बेज़ाहिक। देखो यहां था कुल्लो इंसान इन जाहिकुन, ईजाब था, आपने उसी से कुल्लिया सालिबा बना लिया, ला शैया मिनल इंसानी बेज़ाहिकिन, और कैद क्या लगाएंगे, मुतलक आम्मा में कौन सी जिहत होती है, बिलफेल, तो आप भी बिलफेल लगा दें, क्या बन गया, लाशय अमिनल इंसानी बेजाहिकिन बिलफेल। तो पूरा कलाम यूं है, फिर देखिए कुल्लो इंसानिन जाहिकुन बिलफेले, ला दाइमन का क्या माना, अई लाशय अमिनल इंसानी बेजाहिकिन बिलफेल, तो कुल्लो इंसानिन जाहिकुन बिलफेली और लाशय अमिनल इंसानी बेजाहिकिन बिलफेल, क्या माना, हर इंसान जाहिक है तीन जमानों में से किसी एक जमाने में, और हर इंसान गैर जाहिक है तीन जमानों में से किसी एक जमाने में। बात वाजे हो गई या नहीं, तो कहते हैं सवा उनका ना फिल लफ्ज तरकीब, उन बराबर है कि लफ्जों में तरकीब हो का कौल इना, जैसे हमारा ये कौल है कुल्लो इंसान जाहिक उन बिल फेल ला दाइमन, के हर इंसान जाहिक बिल फेल है, ला दाइमन हमेशा नहीं, ला दाइमन का तर्जमा क्या करेंगे, हमेशा नहीं। फ़कौलुना, तो हमारा कौल जो है ला दाइमन, ये ला दाइमन जो है इशारतुन, ये इशारा है इला हुक्मिन सल्बियिन, किसकी तरफ इशारा है, सल्बी हुक्म की तरफ। कजिए में ईजाब था या सल्ब था, ये सामने जो लिखा हुआ है ईजाब, तो ला दाइमन के जरिए कौन सा निकालेंगे, सालिबा, वो यही तो कह रहे हैं कि ला दाइमन इशारतुन इला हुक्मिन सल्बियिन, ये इशारा है हुक्म सल्बी की तरफ। आई ला शैअ मिनल इंसानी बिज़ाहिकिन बिलफ़िअली, देखा वही कजिया जो आपने निकाला था इन्होंने बता दिया, आपने ला दाइमन से कौन सा कजिया निकाला था, सालिबा, यही वाला ला शैअ मिनल इंसानी बिज़ाहिकिन बिलफ़िअली। औ लम यकुन फिल लफ्ज़ी तरकीबुन, या लफ्जों में तरकीब ना हो, कभी तो लफ्जों में तरकीब होगी जैसे ला दाइमन की कैद आई थी, और कभी लफ्जों में ला दाइमन और ला जरूरत की कैद नहीं होगी, तरकीब नहीं होगी। कौलीना, जैसे हमारा ये कौल कुल्लु इंसान इन कातिब उन बिल इमकान खासी, हर इंसान कातिब है इमकान खास के साथ, इमकान खास आया, और इमकान खास किसे कहते हैं, दोनों जानिब से जरूरत की नफी, दोनों जानिब से मालूम हुआ ये दो मुमकिना आम्मा हैं। दरअसल ये किसके दर्जे में है? दो मुमकिना आम्मा के दर्जे में है। बनाइए दो मुमकिना आम्मा इससे, मौजू और महमूल को इसी तरह रखें। कुल्लो इंसानेन कातिबोन बेल इमकान आमी, और सालिबा भी बना लो, लाशय मिनल इंसानी बिकातिबेन बिल इमकान आमी। बात समझ में आ गई, देखिए खुद बतलाएंगे आपको। कहते हैं कौलिना कुल्लो इंसान इन कातिबुन बिल इमकान खासी फइन्नहु फिल माना कजियतानी मुमकिनतानी आमतानी, इसलिए क्योंकि ये दो मुमकिना आमा कजियों के माना में है। वो बतलाएंगे देखिए आगे, आई कुल्लो इंसान इन कातिबुन बिल इमकान आमी वला शय अमिनल इंसान भी कातिबिन बिल इमकान आमी। तो हासिल कलाम ये कि मुवज्जह मुरक्कबा वो कजिया है जिसमें ईजाब भी होता है और सल्ब भी होता है। अलबत्ता जो एक कजिया है वो पूरा जिक्र होगा और दूसरे की तरफ ला दाइमन या ला जरूरत के जरिए इशारा कर देंगे, इशारा कर देंगे। इधर देखिए भाई, शारह ने कहा कि बाज मुरक्कबात जो हैं उनमें तरकीब होगी लफ्जों में और बाज वो हैं जिनमें लफ्जों के एतबार से तरकीब नहीं होगी, जैसे मुमकिना खासा। भाई ये बात क्यों बयान की उन्होंने कि बाजों में लफ्जों में तरकीब होगी बाजों में लफ्जों में तरकीब नहीं? भाई वजह यह कि मुरक्कबात की बात चल रही है, मुरक्कबा वही कजिया होगा जिसमें तरकीब हो, वो मुरक्कब हो दो कजियों से। बात समझ में आ रही है? मुरक्कबा किसको कहेंगे? जो मुरक्कब हो दो कजियों से। तो बाजों के अंदर ला दाइमन या ला जरूरत की कैद होगी और ला दाइमन के जरिए इशारा होगा किसकी तरफ? मुतलका आम्मा की तरफ। और ला जरूरत के जरिए इशारा होगा किसकी तरफ? मुमकिना आम्मा की तरफ। तो वो लफ्जों के एतबार से ही कजिया क्या हुआ? उसमें तरकीब आ गई, यानी वो मुरक्कब है। जैसे इन्होंने मिसाल जिक्र की, कुल्लो इंसान इन जाहिकुन बिलफेली ला दाइमन, हर इंसान जाहिक बिलफेल है ला दाइमन। तो कुल्लो इंसान इन जाहिकुन बिलफेली ये एक कजिया और ला दाइमन के जरिए इशारा हो गया दूसरे कजिए की तरफ। तो ये हकीकत में क्या है? यहां तरकीब है, ये मुरक्कब है, हकीकत में मुरक्कब है। इस तो ये मुरक्कबात की बात चल रही है ना, इसीलिए इसको मुरक्कब कहते हैं कि ये दो कजियों से मुरक्कब है भाई। अलबत्ता एक कजिया पूरा है और दूसरे की तरफ ला जरूरत या ला दवाम के जरिए इशारा है। तो बाज में लफ्जों में ही तरकीब होगी, यानी वो लफ्जों के एतबार से ही आपको नजर आ जाएगा कि ये मुरक्कब हैं, जबकि बाज ऐसे हैं वो लफ्जों के एतबार से मुरक्कब नहीं होंगे। जैसे मुमकिना खासा, मुमकिना खासा जैदुन कायमुन बिल इमकान खासी। देखो लफ्जों में तो एक ही कजिया है लेकिन माना के एतबार से ये दो मुमकिना आम्मा हैं, एक में ईजाब और एक में सल्ब। जैदुन कायमुन बिल इमकान आमी और जैदुन लैसा बिकायमीन बिल इमकान आमी। तो मुमकिना खासा ये भी मुरक्कब है, ये लफ्जों के एतबार से तो मुरक्कब नहीं लेकिन माना के एतबार से ये कितने कजियों के दर्जे में है? दो कजियों के दर्जे में। तो ये मुरक्कबात हैं, मुरक्कबात उन्हीं को कहेंगे जिनमें तरकीब होगी। और शारह ने आपको बतला दिया कि बाजों में लफ्जों के अंदर तरकीब है, यानी ला दाइमन और ला जरूरत वहां मौजूद है, और बाजों में लफ्जों के अंदर तो तरकीब नहीं लेकिन है वो मुरक्कब ही, जैसे मुमकिना खासा वो माना के एतबार से वहां तरकीब है। बात समझ में आ गई? तो इसलिए इन्होंने तरकीब और गैर तरकीब को जिक्र किया कि बाद में लफ्जों में तरकीब है यानी वो मुरक्कब है हकीकतन, और बाजों में माना के एतबार से तरकीब है, लफ्जों के एतबार से तरकीब नहीं, जैसे कि मुमकिना खासा है तो वो हुक्मन कह लें या यूं कहें वो मानन जो है मुरक्कब है भाई। बात समझ में आ गई? तो कभी कभार लफ्जों में तरकीब होगी यानी ला दाइमन या ला जरूरत की कैद मौजूद होगी, और कभी लफ्जों में तरकीब नहीं होगी जैसे किस में? मुमकिना खासा में। लेकिन ये सब किसके दर्जे में है? दो कजियों के दर्जे में है, दो कजियों। तो सवाल पैदा होता है कि इनमें तो मालूम हुआ ईजाब भी आ गया और सल्ब भी आ गया, मुरक्कबा में ईजाब भी आया और देखो अगर ईजाब हो तो ला दाइमन से आप क्या निकालते हैं? सालिबा। और अगर कजिया सालिबा हो तो ला दाइमन से आप क्या निकालते हैं? मोजिबा निकालते हैं। तो इस कजिए में तो ईजाब भी है और सल भी है, तो इस कजिए को क्या कहेंगे? मोजिबा कहेंगे या सालिबा कहेंगे? सिर्फ इजाब होता है तो हम उसको मुजीबा कह देते हैं, सिर्फ सल्ब होता है तो हम उसको सालिबा कह देते हैं। तो इस कजिए में तो दोनों है, इजाब भी है और सल्ब भी है। तो अब इसको हम क्या कहें, तो आपको बताएंगे कि एतबार जुज अव्वल का है, किसका है, और जुज अव्वल में इजाब हो तो इसको मुजीबा कहेंगे, और जुज अव्वल में सल्ब हो तो इसको सालिबा कहेंगे। और मुमकिन खासा में क्या करेंगे, कुल्लो इंसान इन कातिबुन बिल इमकानिल खास, कहते हैं इसमें जो लफ्जों में जिक्र है उसके एतबार से नाम होगा, हर इंसान कातिब है बिल इमकानिल खास, इजाब है सल्ब है, हकीकत में तो इजाब और सल्ब दोनों हैं लेकिन जिक्र क्या है, इजाब, तो इसको मुजीबा कहेंगे। और अगर हो लाशे अमिन अल इंसान भी कातिबिन बिल इमकानिल खासी, तो फिर तो इमकान खास के साथ सल्ब जिक्र है तो इसको क्या कहेंगे, सालिबा कहेंगे। तो कहते हैं वल इबरत फिल इजाब वसल बिहीन बिल जुज इल अव्वल लदी हुआ असलुल कजियती, और एतबार जो है इजाब और सल्ब के अंदर उस वक्त पहले जुज का है, बिल जुज इल अव्वल वो पहला जुज, अल्लदी हुआ असलुल कजियती जो असले कजिया है। भाई यहां तक बात समझ में आ गई। कहते हैं वालम तू जान ले अन अल कजियत अल मुरक्कबत इन्नमा तहसुलु बितक़यीद कजियत बसीत बिक़यद मिस्लु ला दवामी व ला ज़रूरती, तू जान ले के कजिया मुरक्कबा वो हासिल होता है बितक़यीद कजियत बसीत, के कजिया बसीता को मुक़यद कर दिया जाए, बिक़यद किसी कैद के साथ, मिस्लु ला दवामी व ला ज़रूरती जैसे कि ला दवाम और ला ज़रूरत है, वही बसाइत जो पीछे जिक्र हुए उन्हीं की मिसालें लेते जाएं और उन्हीं के साथ ला दवाम या ला जरूरत की कैद बढ़ाते जाएं तो ये मुरक्कबा बनते चले जाएंगे। वही जो बसीता की मिसालें मैंने आपको लिखवाई थी या जो इन्होंने शरा में जिक्र की उन्हीं के साथ क्या बढ़ा दें, ला दवाम या ला जरूरत, तो क्या बन जाएगा, मुरक्कबा बन जाएगा। और ला दवाम के जरिए इशारा होगा किसकी तरफ, मुतलका आम्मा, और ला जरूरत के जरिए इशारा होगा किसकी तरफ, मुमकिन आम्मा की तरफ। अब आइए मतन पर भाई। तो कहते हैं वकद तुकय्यदुल आम्मतानि वल वक्तियतानि अल मुतलकतानि बिल्ला दवामि ज़ातियफतु सम्मल मशरूतत अल खासत वल उर्फियत अल खासत वल वक्तियत वल मुंतशिरता, और कभी मुकय्यद किया जाता है अल आम्मतानि वो जो दो आम हैं, कौन से आम, मशरूता आम्मा और उर्फिया आम्मा, तवज्जो है मशरूता आम्मा और उर्फिया आम्मा, उन दो की तरफ इशारा है। आम्मा तो मुतलका आम्मा भी तो गुजरा था और मुमकिना आम्मा भी गुजरा है, उनकी तरफ नहीं इशारा बल्कि इशारा किसकी तरफ है, मशरूता आम्मा और उर्फिया आम्मा, तो अलिफ लाम के जी उन दो की तरफ इशारा। और कभी कभार मुकय्यद किया जाता है वो जो दो आम हैं, और इसी तरह वल वक्तियतान अल मुतलकतानी, इसी तरह वो जो दो वक्ती मुतलका हैं, जो दो वक्ती मुतलका कौन से दो हैं, वक्तिया मुतलका और मुंतशिरा मुतलका, क्योंकि दोनों में निस्बत किसी वक्त में होती है, कभी वक्त मुअय्यन में और कभी वक्त गैर मुअय्यन में वो निस्बत जरूरी होती है। तो कहते हैं वक्त तुकय्यदुल आम्मतानि वल वक्तियतान अल मुतलकतानि बिल्ला दवामि ज़ातिय, और कभी कभार मुकय्यद किया जाता है वो जो दो आम्मा हैं और वो जो दो वक्तिया मुतलका हैं, उनको किसके साथ मुकय्यद करते हैं, बिल ला दवामे जाती, ये ला दवामे जाती के साथ, फतुसम्मल मशरूतत अल खासत अल उर्फियत अल खासत अल वक्तियत अल मुंतशिरता, तो फिर उनको मशरूता खासा उर्फिया खासा और वक्तिया और मुंतशिरा कहते हैं। मशरूता आम्मा में ला दवाम की कैद लगा दो अब वो मशरूता खासा कहलाएगा, उर्फिया आम्मा के अंदर ला दवाम की कैद लगा दो अब वो उर्फिया खासा कहलाएगा, वक्तिया मुतलका उसके साथ ला दवाम की कैद लगा दो तो अब वो वक्तिया कहलाएगा, अब वो मुतलक ना रहा अब कैद आ गई तो उसको क्या कहेंगे, वक्तिया। मुंतशिरा मुतलका था अब उसके साथ ला दवाम आ गया तो अब वो मुतलका ना रहा तो उसको सिर्फ क्या कहेंगे, मुंतशिरा। अच्छा एक बात यहां समझ लें, कहते हैं कि इनको मुकय्यद करते हैं बिल ला दवामी जाती, किसके साथ, ला दवा में जाती, मैंने तो कहा ला दवाम या ला जरूरत की कैद आती है, इन्होंने कहा ला दवा में जाती की कैद आती है, किसकी, भाई ये जाती का लफ्ज क्यों बढ़ाया इन्होंने, वजह ये कि इनके अंदर मशरूता खासा में, मशरूता खासा की मिसाल याद है जिसमें यह बयान किया जाता है कि यह निस्बत जरूरी है, यह निस्बत جب تک یہ وصف عنوانی موضوع کے لیے ہے. کل کاتب متحرک الاصابع بالضرورت ما دام کاتب, ہر کاتب کے لیے انگلیوں کا حرکت کرنا ضروری ہے, ما دام کاتبا, جب تک وہ کاتب ہے, یعنی جب تک اس کے لیے یہ کتابت والا وصف ہے تو اس کے لیے کاتب ہونا ضروری ہے. تو اس میں بھی ضرورت کی قید ہے, توجہ ہے جی. اس میں کیا ذکر ہے کہ نسبت ضروری ہے جی. اور کس اعتبار سے ضروری ہے جی. وصف کے اعتبار سے. ضروریہ مطلقہ میں ضرورت کس اعتبار سے تھی؟ ضروریہ مطلقہ جو پہلا تھا اس میں ذات کے اعتبار سے. اس میں میں نے بتایا تھا بھائی کہ یہ پہلے چار ہیں, ان میں نسبت ضروری ہوتی ہے, لیکن یہ ضرورت کبھی ذات کے اعتبار سے ہوتی ہے, کبھی وصف کے اعتبار سے, کبھی وقت معین کے اعتبار سے, اور کبھی وقت. تو یہ نسبت ضروری ہوگی, اور ضروری ہونا یا ذاتی ہوگا یا وصفی ہوگا, یا وقت معین میں ہوگا یا وقت غیر معین. تو مشروطہ عامہ میں نسبت ضروری ہے ذات کے اعتبار سے یا وصف کے اعتبار سے؟ وصف کے اعتبار سے. ہر کاتب کی انگلیوں کے لیے حرکت کرنا ضروری ہے, اس کی ذات کے اعتبار سے یا اس کاتب کے کتابت کے وصف کی وجہ سے؟ کتابت کے وصف کے اعتبار سے. تو اس میں بے ضرورت ذکر ہے, توجہ سے سمجھ لیں اس بات کو. مشروطہ عامہ میں کیا ذکر ہوتا ہے؟ ضرورت ذکر ہوتی ہے. اور ضرورت کس اعتبار سے ہے, ذات کے اعتبار سے یا وصف کے اعتبار سے؟ وصف کے اعتبار سے ضرورت ذکر ہے, وصف کے اعتبار سے. یعنی ہر کاتب کی انگلیاں حرکت کریں گی ضروری طور پر جب تک وہ کاتب, یعنی کاتب کے لیے انگلیوں کا حرکت کرنا ضروری ہے جب تک وہ کاتب ہے. جب تک وہ, جب اس کے لیے انگلیوں کا حرکت کرنا ضروری ہوا اس وصف کتابت میں, جب ضروری ہے تو دائمی ہے یا نہیں؟ جو چیز ضروری ہوگی وہ دائمی بھی ہوگی. کاتب ہو اور انگلیاں حرکت نہ کریں, ایسا ہو سکتا ہے؟ تو معلوم ہے جب تک کاتب ہے انگلیاں حرکت کرتی رہیں گی دوام کے طریقے پر, توجہ ہے
جی.
یہی مشروطہ عامہ, اس میں بے ضرورت کی قید ہے اور اسی میں بے دوام کی قید لے آؤ تو وہ عرفیہ عامہ بن جاتا ہے
جی.
عرفیہ عامہ میں کیا بیان ہوتا ہے؟ یہ نسبت ضروری ہے, یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ ہر کاتب کی انگلیاں کیا ہیں, حرکت کرنے والی, یہ نسبت دائمی ہے. مشروطہ عامہ میں ہے کہ یہ نسبت ضروری ہے جب تک یہ کتابت کر رہا ہے, اور عرفی عامہ میں کیا ذکر ہے کہ یہ نسبت دائمی ہے جب تک یہ کتابت کر رہا ہے, توجہ ہے. تو مجھے بتائیے, ایک آدمی کتابت کر رہا ہو تو اس کی انگلیاں ساکن ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی. معلوم ہوا جب تک وہ کتابت کر رہا ہے دائمن اس کی انگلیاں کیا کریں گی, حرکت کریں گی. تو دائمن کہہ لو اور یا ضروری کہہ لو, کیونکہ دوام کے اندر بھی ضروری آ جاتا ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ دوام دو قسم پر ہے, کبھی ایک ضروری ہوتا ہے جدا ہو ہی نہیں سکتا, اور کبھی جدا ہونا ممکن ہوتا ہے, توجہ ہے
جی.
اچھا اب پھر آئیے جی, مشروطہ عامہ میں کیا ذکر ہوتا ہے کہ نسبت ضروری ہے, کس اعتبار سے, ذات کے اعتبار سے یا وصف کے اعتبار سے؟ وصف کے اعتبار سے یہ نسبت ضروری ہے. وصف کے اعتبار سے یہ نسبت جب ضروری ہے معلوم ہوا دائمی ہے. وصف کے اعتبار سے یہ نسبت جب ضروری ہے, ضروری کا مطلب ہے جدا ہو ہی نہیں سکتی, ممکن ہی نہیں ہے. جب جدا نہیں ہو سکتی تو دائمن ہوگی نا, کیا ہوگی؟ تو معلوم ہوا کہ مشروطہ عامہ میں یہ ذکر ہے کہ نسبت ضروری ہے جب تک یہ وصف ہے, اور جب ضروری ہے تو معلوم ہوا یہ دائمی ہے. کیا ہے؟ تو جب مشروطہ عامہ ہے اور آگے آپ لا دائمن کی قید لگائیں, آپ مرکبہ بنانا چاہتے ہیں. کیا بنانا چاہتے ہیں؟ مرکبہ میں کیا کرتے ہیں, لا ضرورت کی قید لگاتے ہیں یا لا دائمن. مثلا میں کہتا ہوں کل کاتب متحرک الاصابع بے ضرورتی ما دام کاتبن لا دائمن, لا دائمن. تو ما قبل میں کیا ذکر ہے کہ یہ نسبت ضروری ہے, یہ
ضروری
اور ضروری ہے تو معلوم ہوا دائمی ہے. تو معلوم ہوا ما قبل میں دوام وصفی ذکر ہے. کیا ذکر ہے؟ دوام وصفی, کہ یہ چیز دائمن ہوگی جب تک کتابت والا وصف ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی, میرے خیال توجہ نہیں ہے, تھک گئے ہو. देखिए फिर सुनिए, मशरूता आम्मा में जरूरत जिक्र होती है, और यह जरूरत किस एतबार से है? वसफ के जात के एतबार से नहीं है, बल्कि वसफ के एतबार से हम कह रहे हैं कि हर कातिब के लिए उंगलियों का हरकत करना जरूरी है। जात नहीं, जात तो इंसान किया, और इंसान में जरूरी नहीं कि उसकी उंगलियां हर वक्त हरकत करती रहें। हां, यह वसफ किताबत के एतबार से इंसान की उंगलियों का हरकत करना जरूरी, तो जरूरत जिक्र हुई, और जरूरत किस एतबार से है मशरूता आम्मा में? वसफ के एतबार से। जब वसफ के एतबार से जरूरी है तो मालूम हुआ वसफ के एतबार से दायमी भी है। जब जरूरी है, जुदा नहीं हो सकता तो दायमी होगा, तो गोया उसमें दवा में वसफी जिक्र हुआ। क्या जिक्र हुआ? तो गोया उसमें दवा में वसफी जिक्र हुआ। और आगे आप कह दें ला दाइमन, ला माकबल में है दवा में वसफी, और ला दाइमन से भी मुराद ले लें ला दवा में वसफी। तवज्जो है, एक में है दवाम वस्फी है, आगे आ जाए दवाम वस्फी ला दाइमन है ना, आगे आ जाए दवाम वस्फी नहीं है, ये तो एक दूसरे की नकीज बन जाएंगे, और ये तो दुरुस्त नहीं है भाई। ये तो भाई आगे आपने ला दाइमन लाना है, और माकबल में भी क्या मजकूर है? माकबल में भी गोया दवाम समझ में आ रहा है, आगे आप क्या ला रहे हैं? ला दवाम। तो ये दवाम और ला दवाम अलग अलग होने चाहिए, एक ही चीज के लिए दवाम भी हो और ला दवाम भी हो, ये तो इज्तिमाई नकीजैन है, ये तो मुमकिन ही नहीं है भाई। बात समझ में आ रही है? आप ये कहें हर कातिब की उंगलियों का लिए हरकत करना दाइमी है, और आगे कहें ला दाइमन, हर कातिब के लिए उंगलियों का हरकत करना दाइमी नहीं है, ये तो इज्तिमाई नकीजैन है। यूं कहें जैद खड़ा भी है और जैद खड़ा नहीं है, जैद के लिए क्याम साबित भी है और जैद से क्याम की नफी भी कर रहे हैं, ये दोनों तो इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर क्याम है तो क्याम की नफी नहीं है, और अगर क्याम की नफी है तो फिर क्याम नहीं है, तो इज्तिमाई नकीजैन तो नहीं हो सकता। एक चीज इंसान है तो ला इंसान नहीं हो सकती, और ला इंसान है तो इंसान नहीं हो सकती। तो माकबल में मशरूता आम्मा में क्या जिक्र है? जरूरत, और जरूरत वस्वी है, और जहां जरूरत वस्वी होती है वहां दवा में वस्वी होता है, तो मालूम हुआ मशरूता आम्मा में दवा में वस्वी भी आ गया, जरूरत वस्वी के साथ साथ क्या आ गया? दवा में वस्वी। और आगे आप ला दवाम के लिए क्या करना चाहते हैं? ला दवाम को बयान कर रहे हैं, तो ये ला दवाम उस दवाम के अलावा होना चाहिए, वहां क्या है? दवा में वस्फी, तो यहां ला दवा में जाती कर दो, ला दवा में। अब दोनों अलग अलग हो गए, एक में दवा में वस्फी है तो दूसरे में ला दवा में जाती है। अगर दोनों में दवा में वस्फी हो, इधर है दवा में वस्फी और ला दवा में क्या है? ला दवा में वस्फी, ये तो इज्तिमाई नकीजैन हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। दवाम हो भी और दवाम न भी हो, हां दवाम की जिहत बदल दो, एक में दवाम किस एतबार से है? वसफ के एतबार से, और एक दूसरी तरफ हम कह रहे हैं ला दवाम है वो किस एतबार से है? जात के एतबार से। तो अब इज्तिमाई नकीजैन लाजिम नहीं आएगा, इसीलिए उन्होंने कहा कि कभी कभार मुकैद करते हैं इनको ला दवा में जाती के साथ, ला दवा में वस्फी के साथ मुकैद नहीं करते, वरना तो खराबी लाजिम आएगी, कलाम ही गलत हो जाएगा भाई। अब आइए शरा में, कौलहू वकद तुकैदुल आम्मतानी, और कभी कभार मुकैद किया जाता है उन दो आम्मा को। मैंने बताया आम्मा से कौन से दो कजिये मुराद हैं? मशरूता आम्मा और उर्फिया आम्मा, तो वही बयान करें। अयल मशरूततुल आम्मतु वल उर्फियतुल आम्मतु, यानी मशरूता आम्मा और उर्फिया आम्मा। मतन में आया था वल वक्तियतानी, मैंने क्या बताया इससे कौन से दो कजिये मुराद हैं? वक्तिया मुतलका और मुंतशिरा मुतलका, क्योंकि उनमें वक्त की कैद है। वही बयान करें, कौलहू वल वक्तियतानी अयल वक्तियतुल मुतलकतु वल मुंतशिरतुल मुतलकतु, ये दो मुराद हैं। कौलहु बिल्ला दवाम जाती, मुसन्निफ का कौल ला दवाम जाती। अच्छा भाई, इस मकाम को अच्छी तरह समझ लें भाई। इन्होंने कहा ऊपर मतन में कि कभी कभार दोनों आम्मा जो हैं, यानी मशरूता आम्मा और उर्फिया आम्मा, उनको और इसी तरह वो दोनों जो वक्ती हैं, यानी वक्तिया मुतलका और मुंतशिरा मुतलका, उनको मुकैद करते हैं ला दवाम जाती के साथ। किसके साथ मुकैद करते हैं? ला दवाम जाती के साथ। मैंने आपको बतला दिया कि ला दवाम दो किस्म पर है, एक ला दवाम है जाती यानी जात के एतबार से, और एक लादवाम है वस्फी यानी वसफ के एतबार से। तो इनको जो मुकैद करते हैं वो लादवाम जाति के साथ करते हैं, इसलिए क्योंकि मशरूता आमा और मौरफिया आमा उनमें दवाम वस्फी मौजूद है। क्या मौजूद है? दवाम वस्फी है। तो अगर इनको मुकैद कर लें लादवाम वस्फी के साथ तो फिर इस सूरत में यह तो इज्तिमाई नकीजैन हो जाएगा। कजिए से पता चला कि दवाम वस्फी है और आगे आप कैद क्या लगा रहे हैं कि ला दवाम वस्फी है, तो दवाम भी वस्फी और ला दवाम भी वस्फी, ये तो ऐसे ही है, एक ही चीज इंसान भी हो और ला इंसान भी हो। हालांकि ये तो नहीं हो सकता एक ही चीज इंसान भी हो और ला इंसान भी हो, क्योंकि ये तो इज्तिमाई नकीजैन है। तो लिहाजा जब कजिए के अंदर दवाम वस्फी जिक्र है, जैसे किस में है? मशरूता आमा और उर्फिया आमा में। मशरूता आमा में दवाम वस्फी कैसे? मशरूता आमा में देखो भाई, मशरूता आमा में क्या जिक्र था? मसलन कुल्ल कातिबिन मुतहर्रिकुल असाबी बिजरूरती मादाम कातिबन, हर कातिब की उंगलियों का हरकत करना जरूरी है मादाम कातिबन, जब तक वो कातिब है। मालूम हुआ कि वस्फे किताबत की हालत में उंगलियों का हरकत करना जरूरी है, और जब वस्फे किताबत की हालत में उंगलियों का हरकत करना जरूरी है यानी ये हरकत जुदा हो ही नहीं सकती, मालूम हुआ ये हरकत दायमी भी है। जब जरूरी है तो दायमी भी है, जहां जरूरत वस्फी होगी वहां दवा में वस्फी भी होगा, यानी जब तक ये किताबत का वसफ है उंगलियों की हरकत उससे जुदा नहीं हो सकती, उंगलियों की हरकत करना जरूरी है, इसका जुदा होना महाल है नामुमकिन है। तो जब उंगलियों की हरकत कातिब से जुदा होना महाल है तो मालूम हो उंगलियों की हरकत उसके साथ दाइम है। क्या है? तो जहां जरूरत वस्फी होती है वहां दवा में वस्फी। बात समझ में आ रही है? क्या जिक्र था? हर कातिब की उंगलियों का हरकत करना जरूरी है, कब तक? जब तक वो कातिब है। मालूम हुआ उससे ये उंगलियों की हरकत जुदा ही नहीं हो सकती, जब जुदा ही नहीं हो सकती तो मालूम हुआ उसके साथ ये हरकत उंगलियों की दाइमी है, जब तक ये वसफ है, जब तक वो किताबत करेगा तो दाइमन उसकी उंगलियां हरकत करती रहेंगी। तो जहां जरूरत वस्फी हो वहां क्या होता है? दवा में वस्फी होता है। तो मालूम हुआ मशरूता आमा में दवा में वस्फी है। आगे अगर ला दवाम भी वस्फी ले आए तो कजिए से तो पता चला दवाम वस्फी है, और आगे आप ला दवाम भी कौन सा ले आए? वस्फी ले आए, तो ये तो इज्तिमाई नकीजैन आ गया भाई। एक तरफ आप कह रहे हैं दवाम वस्फी है, दूसरी तरफ कह रहे हैं ला दवाम वस्फी है, एक ही चीज इंसान भी है और ला इंसान भी है, ऐसा नहीं हो सकता। तो मशरूता आमा में मालूम हुआ जरूरत वस्फी है, लेकिन जरूरत वस्फी के जिमन में दवा में वस्फी भी है, जबकि उर्फिया आमा में तो होता ही दवा में वस्फी है। उर्फी आमा में भी जरूरत की कैद नहीं होती, भी दवाम की कैद होती है। कुल्लु कातिबिन मुतहर्रिकुल असाबिई बिद्दवामी मादामा कातिबन, ये मालूम हुआ कि ये जो उंगलियों की हरकत है ये दाइमन होगी किसके साथ? कातिब के साथ, जब तक वो कातिब है। तो इसमें तो दवा में वस्फी है। क्या है? मशरूता आमा में जरूरत वस्फी थी, लेकिन जरूरत वस्फी के साथ क्या लाजिम? दवा में वस्फी, जबकि उर्फिया आमा में तो है ही दवा में वस्फी, यहां तो जरूरत का जिक्र ही नहीं। बात समझ में आ गई? मालूम हुआ मशरूता आमा में भी दवा में वस्फी और उर्फिया आमा में भी दवा में वस्फी। तो अब आगे जो ला दाइमन के साथ मुकैद करेंगे तो वो ला दाइमन वस्फी नहीं होना चाहिए, वरना क्या खराबी लाजिम आएगी? इज्तिमाए नकीजैन। कजिए से क्या पता चला? खराबी यह आएगी कि कजिए से पता चलेगा कि दवाम वस्फी है, और आगे ला दवाम से पता चलेगा कि ला दवाम भी कौन सा है? वस्फी। तो दवाम भी वस्फी, ला दवाम भी वस्फी, ये तो हो ही नहीं सकता भाई। एक चीज होगी, या दवाम वस्फी होगा या ला दवाम वस्फी होगा। लिहाजा इसलिए आगे ला दवाम वस्फी नहीं लाते, बल्कि ला दवाम जाती लाते हैं कि जात के एतबार से दवाम नहीं है। ये जो मशरूता आमा और उर्फी आम्मा, इन में दवा में वस्फी तो है, वसफ के एतबार से तो यह दाइम है यह वाली सिफत कातिब के लिए कि उसकी उंगलियां क्या करेंगी, हरकत करेंगी, लेकिन जात के एतबार से यह उसके साथ दाइम नहीं है। देखो अब बात ठीक हो गई, कजिए में जिक्र है दवा में वस्फी और आगे आप ला दवा में जाती ले आए, दवा में वस्फी और चीज, ला दवा में जाती और चीज, तो लिहाजा अब दोनों में टकराव नहीं, अब इज्तिमाई नकीजैन की खराबी नहीं है। बात समझ में आ गई, तो इसलिए ला दवा में जाती के साथ मुकैद करते हैं, ला दवा में वस्फी के साथ मुकैद नहीं करते, इसलिए मतन में कहा कि कभी इनको ला दवा में जाती के साथ मुकैद करते हैं। बात समझ में आ गई, तो अब ये इबारत देखिए भाई, कौलहू बिल्ला दवा में जाती, ये अब वो ला दवा में जाती का माना बयान करने लगे हैं कि इसका क्या माना है। कहते हैं वह माना ला दवा में जाती, मैंने आपको बतला दिया, इधर देखिए ला दवा में जाती का क्या माना, यानी जात के एतबार से ये निस्बत दायमी नहीं, जात के एतबार से ये निस्बत दायमी नहीं। मसलन मैं आपसे कहता हूं कुल्लो इंसान जाहिकुन बिलफेली, हर इंसान क्या है, जाहिक बिलफेल है, ला दाइमन हमेशा नहीं, हर इंसान जाहिक बिलफेल है लेकिन हमेशा नहीं, और हमेशा नहीं कौन सा है, जाती है, यानी जात के एतबार से हमेशा नहीं, हर इंसान तीन जमानों में से किसी जमाने में हंसता है लेकिन जात के एतबार से हमेशा नहीं हो, हमेशा नहीं हंसता, जात के एतबार से हमेशा नहीं हंसता। तो ला दवाम में जाती लफ्जों से ही पता चल रहा है कि ला दवाम है और किसके एतबार से है, जात के एतबार से है। बात समझ में आ गई, तो यही बयान करेंगे, कहते हैं वह माना ला दवा में जाती, ला दवा में जाती का माना यह है कि हुआ अन हाजही निस्बत अल मस्कूरा तफिल कजियती, कि ये जो निस्बत मस्कूर हुई इस कजिया में, लैसा दाइमतन ये हमेशा नहीं है, मा दाम जातुल मौजू मौजूदतन जब तक जात मौजू मौजूद है। भाई जरा उस मिसाल पे नजर रखो, ऊपर तीन चार सत्रें कबल मिसाल आई थी किताब में, चार या पांच सत्रें, कुल्लो इंसान जाहिकुन बिलफेली ला दाइमन, मिल गई मिसाल चार पांच सत्रें ऊपर, कुल्लो इंसान जाहिकुन बिलफेली ला दाइमन, इससे पांच छह सत्रें पहले देख लो, अभी जहां तरकीब और गैर तरकीब की बात आई थी वहां क्या था, कुल्लो इंसान जाहिकुन बिलफेली ला दाइमन। जरा इस मिसाल पे नजर रखो, इस मिसाल के आखिर में आया ला दाइमन, क्या आया, तो ये ला दाइमन के जरिए आपको बताएंगे इस बात की तरफ इशारा है कि ये जो पीछे कजिया था कुल्लो इंसान इंजाहिकुन बेल फेल, इस कजिए के अंदर जो निस्बत थी, यहां तो ये मुजिबा है, सालिबा भी हो सकता है, क्या साल, लेकिन यहां मुजिबा है, तो बहरहाल जो भी निस्बत है चाहे इजाब वाली है चाहे सल्ब वाली, ला दाइमन के जरिए ये बतलाया जाता है कि ये जो इस कजिए में निस्बत थी ये जात के एतबार से दाइम नहीं है, ये जात के एतबार से दाइम नहीं है। माना समझ में आ गया, यही बयान कर रहे हैं, कहते हैं वह माना ला दवा में जाती ये हुआ अन नहाद ही निस्बत अल मस्कूरत अफिल कजियती, कहते हैं ला दवा में जाती का माना यह है कि ये जो निस्बत मस्कूर है इस कजिए में, कि कौन सा कजिया, जो ला दाइमन से पहले आए, जो भी हो, यहां तो मैंने एक मिसाल आपको दिखाई, जो भी कजिया हो जो ला दाइमन से पहले आए, कि ये जो निस्बत मस्कूर है इस कजिया के अंदर जो माकबल में आया, लैसा दाइमतन मा दाम जातुल मौजू मौजूदतन, ये दाइमी नहीं है जब तक जात मौजू मौजूद है, ये दाइमी दाइमी नहीं है, यानी ला दवाम है, वही ला दवाम है, दाइमी नहीं, और जब तक जात मौजू मौजूद है, यानी ये ला दवाम कौन सा है, जात के एतबार से है। बात समझ में आ रही है, फिर उस मिसाल पर नजर रखो, कुल्लो इंसान जाहिकुन बिलफेली ला दाइमन, ये ला दाइमन के जरिए यह बयान किया जा रहा है कि ये जो पीछे कजिए के अंदर जो निस्बत बयान हो रही है ये जात मौजू के एतबार से जरूरी नहीं, ये ऐसी नहीं है कि जब तक जात मौजू होगा ये निस्बत रहेगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जात मौजू के एतबार से यह निस्बत दाइमी नहीं है। बात समझ में आ गई, तो लैसा दाइमतन मादामा जातुल मौजू मौजूदतन, ये ला दवा में जाती है, लैसा दाइमतन इससे क्या लफ्ज निकला, ला दवा, और मा दामा जातुल मौजू मौजूदतन इससे क्या समझ में आया, जात, जात के एतबार से, फिर देखो कि ला दवाम जाती का माना यह है कि यह जो निस्बत मजकूर है इस कजिए में, यह जो माकबल में आया, यह लैसा दाइमतन मा दाम जातुल मौजूए मौजूदतन, यह दाइमी नहीं, इसमें दवाम नहीं, यानी यह हमेशा नहीं है जब तक जात मौजू मौजूद है, यानी जात मौजू के एतबार से यह दाइमी नहीं है, जात मौजू के एतबार से दाइमी नहीं है। भाई इधर देखिए, जब यह निस्बत जात मौजू के एतबार से दायमी नहीं तो मालूम हुआ कभी जुदा भी होती होगी, कभी एक है निस्बत, एक है उस निस्बत का जुदा होना, वो उसकी नकीज है। जुदा होना क्या है? अगर कजिए में ईजाब है तो उसकी नकीज क्या आएगी? सल्ब। और अगर कजिए में सल्ब है तो उसकी नकीज क्या आएगी? ईजाब। मैंने बताया था ना, ला दाइमन के जरिए आपने कौन सा कजिया निकालना है जी? ला दाइमन के जरिए आपने मुतलका आम्मा निकालना है, और वो मुतलका आम्मा माकबल के मुखालिफ होगा। किस चीज में? कैफियत में। यानी अगर वो मुजिबा है तो ये क्या होगा? सालिबा। और अगर वो सालिबा है तो ये क्या होगा? मुजिबा। तो ये जो ईजाब और सल्ब है ये एक दूसरे की नकीज है भाई। जैदुन कायमुन और जैदुन लैसा भी कायमिन, ये दोनों एक दूसरे के नकीज हैं। अगर जैदुन कायमुन साबित है तो जैदुन लैसा भी कायमिन साबित नहीं, और अगर जैदुन लैसा भी कायमिन है तो जैदुन कायमुन नहीं है। यानी एक ही वक्त में, किस में? एक। हां, वक्त मुख्तलिफ हो फिर तो बात ही अलग है। बात समझ में आ गई? तो एक है होना और उसकी नकीज क्या है? न होना। और एक है न होना, उसकी नकीज क्या है? होना। एक ही चीज का होना हो तो उसकी नकीज क्या है? उसका न होना। और एक चीज का न होना जिक्र है तो उसकी नकीज क्या है? होना। तो देखिए किताब की इबारत पर कहते हैं कि दवा में जाती का माना यह है कि जो कजिए में निस्बत है यह जात मौजू के एतबार से दाइमी नहीं है। इधर देखिए, जब जात मौजू के एतबार से यह निस्बत दाइमी नहीं तो किसी वक्त इसकी नकीज भी तो वाकई होती होगी। इसमें ईजाब है तो कभी सल्ब भी तो होता होगा, और अगर इसमें सल्ब है तो कभी ईजाब भी होता होगा। यह माना है फयकूनु नकीजुहा वाकयान अलबत्ता। जब जात के एतबार से यह निस्बत दायमी नहीं तो इस निस्बत की जो नकीज है वह भी वाकई होगी, अलबत्ता कतई तौर पर, फी जमानी मिनल अजमिनती, तीन जमानों में से किसी जमाने में। यह जो निस्बत माकबल में जिक्र थी वो या ईजाबी होगी या सलबी। अगर वो ईजाबी है तो उसकी नकीज क्या आएगी? सलबी। और अगर वो सलबी है तो उसकी नकीज क्या आएगी? ईजाबी। जब इन्होंने कह दिया कि ये जो नकीज ला दाइमन के जरिए, ला दाइमन के जरिए इशारा हो रहा है कि ये जो माकबल में कजिए के अंदर निस्बत मजकूर थी, चाहे ईजाबी थी चाहे सलबी, ये जात मौजू के एतबार से दाइमी नहीं। जब जात मौजू के एतबार से दाइमी नहीं है, हमेशा नहीं है, मतलब है कभी जुदा भी होती होगी, यानी इसकी नकीज भी सादिकाती होगी। इसमें है होना तो कभी ना होना होगा, और अगर इसमें ना होना है तो कभी होना होगा। बात समझ में आ गई? यह माना है फयकूनु नकीजुहा वाकयान अलबत्ता, तो फिर इसकी नकीज भी वाकई होगी कतई तौर पर, फी जमानी मिनल अजमिनती, तीन जमानों में से किसी जमाने में। तो लिहाजा फयकून इशारतन, लिहाजा ये ला दाइमन इशारा होगा, इला कजियतिन मुतलकतिन आमतिन, किसकी तरफ? मुतलका आम। क्यों? क्योंकि तीन जमानों में से किसी जमाने में वाकई होगी। क्या बताया? इसकी नकीज वाकई होगी तीन जमानों में से किसी जमाने में, और तीन जमानों में से किसी जमाने में इसके लिए कौन सी जिहत जिक्र की जाती है? बेलफेल। बेलफेल। और बेलफेल की जिहत किस कजिए में आती है? मुतलका आम्मा में। किस में? मुतलका। फिर देखो, जब कह दिया कि ये जो निस्बत जिक्र है लैसत दाइमतन मा दाम जातुल मौजू मौजूदतन, जब तक जात मौजू मौजूद है ये निस्बत जो कजिए में पीछे जिक्र हुई ये दाइमी नहीं। जब दाइमी नहीं तो कभी इसकी नकीज भी क्या होगी? वाकई होगी। कभी इसकी नकीज भी, और वो किस में होगी? तीन जमानों में से किसी एक जमाने में। इधर देखिए, हासिल कलाम बयान करने लगा हूं। ला दाइमन आया कजिए के आखिर में, इसके जरिए क्या बताया जाता है कि जो पीछे कजिए में निस्बत जिक्र हुई ये जात मौजू के एतबार से दाइमी नहीं। जब दाइमी नहीं है तो कभी जुदा होती है या नहीं? तीन जमानों में से किसी जमाने में जुदा हो जाती है, यानी इसकी नकीज आ जाती है। इसीलिए आगे ला दाइमन के जरिए जो हम कजिया निकालते हैं,
अगर माकबल में मुजीबा हो तो हम उसकी नकीज क्या निकालते हैं, सालिबा। अगर माकबल में सालिबा हो तो हम उसकी नकीज लादाइमन से क्या निकालते हैं, मुजीबा। बात समझ में आ गई। इसलिए हम, क्योंकि ये इसमें यह बताया जाता है जब यह निस्बत दायमी नहीं है तो मालूम हो उसकी नकीज भी कभी साबित होती होगी, और नकीज वो माकबल की, माकबल में अगर ईजाब है तो नकीज क्या होगी, सल्ब, और अगर माकबल में सल्ब है तो नकीज क्या होगी, ईजाब। लिहाजा ला दाइमन के जरिए फिर आगे जो कजिया निकालते हैं वो माकबल की नकीज होता है, उसमें ईजाब हो तो इसमें सल्ब, उसमें सल्ब हो तो इसमें ईजाब, और नीज ये तीन जमानों में से किसी जमाने में होता है। लिहाजा यहां बिलफेल की भी कैद हम साथ लगा देते हैं, बिलफेल की भी, और बिलफेल तो किस में आता है, मुतलका आम्मा में। मालूम हुआ ला दाइमन के जरिए इशारा है किसकी तरफ, मुतलका आम्मा की तरफ, लेकिन ऐसा मुतलका आम्मा जो माकबल के मुखालिफ होना चाहिए, उसकी नकीज होना चाहिए, माकबल के मुखालिफ यानी उसकी नकीज होनी चाहिए, कैफी यानी कैफियत में उसके मुखालिफ हो और मकदार में उसके मुआफिक हो। बात समझ में आ गई। यह माना है कि फयकून इशारतन, तो ये जो ला दाइमन है इसके जरिए इशारा होता है इला कजियतिन मुतलकतिन आम्मतिन, ऐसे मुतलका आम्मा कजिए की तरफ, मुखालिफतिन लिल असली, जो असल कजिया के मुखालिफ होता है, फिल कैफी किस में, कैफियत में यानी इजाब व सल्ब में, व मुआफिकतिन फिल कमी, और जो असल कजिया के मुआफिक होता है मकदार में, यानी अगर वो कुल्ली है तो ये भी कुल्ली निकालेंगे, अगर वो जुजी है तो ये भी जुजी निकालेंगे। फफ हम, इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। बात समझ में आ गई। قوله المشروطة الخاصة هي المشروطة العامة المقيدة باللا دوام الذاتي, مشروطة خاصة کہتے ہیں وہی یہ مشروطة عامة ہے لیکن اس میں کون سی قید آ جاتی ہے لا دوام ذاتی تو کہتے ہیں هي المشروطة العامة یہ وہی مشروطة عامة ہے المقيدة باللا دوام الذاتی جو مقید ہو لا دوام ذاتی کے ساتھ نحو كل كاتب متحرك الاصابع بضرورة ما دام كاتبا हर कातिब जो है उसकी उंगलियां हरकत करती हैं बेजरूरती यकीनी तौर पर मा दाम कातिबन जब तक वो कातिब है ला दाइमन ये कैद बढ़ा दी मशरूता आम्मा के साथ ला दाइमन की कैद बढ़ा दी तो ये क्या बन गया मशरूता खासा अब ला दाइमन का क्या माना बनाइए जरा देखिए पीछे कुल्लु कातिबिन मुतहर्रिकुल असाबे इजाब है सल्ब है इजाब तुम सल्ब वाला बनाओ ला शय अमीन अल कातिबी बे मुतहर्रिकल असाबे और मुतलका आम्मा है तो बिलफेल की जिहत लाओ ला शय अमीन अल कातिबी बे मुतहर्रिकल असाबे बिलफेल देखिए यही बयान कर रहे हैं ऐ ला शय अमीन अल कातिबी बे मुतहर्रिकल असाबे बिलफेल तरीका समझ में आया तो माकबल से कैफियत में मुखालिफत हो और कमियत में मुआफकत हो आगे देखिए قوله والعرفية الخاصة هي العرفية العامة المقيدة بالله دوام الذاتي कहते हैं ये उर्फिया खासा वही उर्फिया आम्मा है अलबत्ता ये मुकैद है किसके साथ ला दवाम जाती के साथ का कौलिना जैसे हमारा ये कौल बिद दवाम ला शय अमिनल का ये बिद दवाम और बिद जरूरत की कैद चाहे शुरू में लगा दो दरमियान में लगा दो आखिर में लगा दो कहीं पर भी लगा सकते हैं तो कहते हैं का कौलिना जैसे हमारा कौल बिद दवामी ला शय अमीन अल कातिबी बि साकिन अल असाबिई मा दाम कातिबन ला दाइमन ला शय अमीन अल कातिबी बि साकिन अल असाबिई किसी कातिब की उंगलियां साकिन नहीं मा दाम कातिबन जब तक वो कातिब है यह उर्फिया आम्मा आ गया और आगे ला दाइमन की कैद आ गई अब यह क्या बन गया उर्फिया खासा और ला दाइमन के लिए इशारा है किसकी तरफ मुतलका आम्मा अब मुतलका आम्मा बनाओ और इसमें इजाब है या सल्ब है इस कजिए में सल्ब है तो इजाब वाला बनाओ क्या कुल्लु कातिबिन हां महमूल को नहीं बदलना साकिनुल असाबिया है उसी को रखो कुल्लु कातिबिन साकिनुल असाबिया बिल फेली देखिए खुद बतला रहे हैं ऐ कुल्लु कातिबिन साकिनुल असाबिई बिल फेली यानी हर कातिब वो साकिनुल असाबिई होता है तीन जमानों में से किसी एक जमाने में और देखो मशरूता खासा के अंदर एक मिसाल दी कजिया मुजीबा लाए कुल्लु कातिबिन मुतहर्रिकुल असाबिअ बिज़रूरति मादामा कातिबन ला दाइमन, मुजिबा है सालिबा है?
मुजिबा।
और उर्फिया आम्मा में सालिबा लेकर आए, ला शय अमिनल कातिब विसाकिनिल असाबिअ मादामा कातिबन ला दाइमन। तो एक में मुजिबा की मिसाल दे दी, एक में सालिबा की, के तरीका तलबा सीखते चले जाएं भाई। हर एक की अलग अलग मुजिबा और सालिबा अलग अलग मिसाल देंगे, बात बड़ी लंबी हो जाएगी। बस तरीका यही है, ला दाइमन के जरिए इशारा होता है मुतलका आमा की तरफ। माकबल में मुजिबा हो तो मुतलका आमा कैसा निकालो? सालिबा। और माकबल में अगर सल्ब हो तो मुतलका आमा कैसा निकालो? मुजिबा। और मिकदार वही रखो। तरीका समझ में आ गया। कौलुहु वल वक्तियत वल मुंतशिरता, कहते हैं लम्मा कुय्यदतिल वक्तियतुल मुतलकतु वल मुंतशिरतुल मुतलकतु बिल्ला दवामी जाती हुज़िफा मिन इस्मैहिमा लफ्ज़ुल इतलाक़। भाई इन्होंने बताया था मतन में कि वक्तिया मुतलका और मुंतशिरा मुतलका, उसके साथ कभी ला दवामे जाती की कैद बढ़ा देते हैं तो फिर उसको वक्तिया और मुंतशिरा कहते हैं। अब मुतलका का लफ्ज नाम से खत्म कर देते हैं क्योंकि अब ये मुतलक ना रहा बल्कि क्या बन गया? मुकय्यद। तवज्जो है, वक्तिया मुतलका, इसको मुतलका क्यों कहते थे? क्योंकि इसमें ला दवाम की कैद नहीं थी, और जब ला दवाम की कैद आ गई तो अब ये वक्तिया मुतलका ना रहा बल्कि ये तो मुकय्यद बन गया, लिहाजा इसको सिर्फ क्या कहेंगे? वक्तिया। और मुंतशिरा मुतलका, उसको मुतलका क्यों कहते थे? क्योंकि उसमें भी ला दवाम की कैद नहीं थी, मुतलक था। अब जब कैद आ गई है तो अब मुतलका नहीं कह सकते बल्कि सिर्फ क्या कहेंगे? मुंतशिरा। तो कहते हैं लम्मा कुय्यदतिल वक्तियतुल मुतलकतु वल मुंतशिरतुल मुतलकतु बिल्ला दवामी जाती, जब मुकय्यद कर दिया गया वक्तिया मुतलका और मुंतशिरा मुतलका को ला दवामी जाती के साथ, तो हुज़िफा मिन इस्मैहिमा लफ्ज़ुल इतलाकी, तो हजफ कर दिया गया इन दोनों के नामों में से इतलाक के लफ्ज को। फसुम्मियतिल उला वक्तियतन वस्सानियतु मुंतशिरतन, तो पहले को वक्तिया और दूसरे को मुंतशिरा कहा गया। फल वक्तियतु, तो वक्तिया जो है ही अल वक्तियतुल मुतलकतुल मुकय्यदतु बिल्ला दवामी जाती, कहते हैं ये जो वक्तिया है ये वही वक्तिया मुतलका है जो मुकय्यद है ला दवामे जाती के साथ, नहु मिसाल के तौर पर। अब देखिएगा, वक्तिया की मिसाल मुजिबा लाएंगे और मुंतशिरा की मिसाल सालिबा लाएंगे। नहु कुल्लु कमरिन मुनखसिफुन बिज़रूरति वक्तल हैलूलति ला दाइमन, हर चांद जो है उसको ग्रहण लगता है यकीनी तौर पर वक्तल हैलूलति, हैलूलत के वक्त, यानी जब जमीन हायल हो जाए चांद और सूरज के दरमियान। ला दाइमन, हमेशा नहीं। ला दाइमन के लिए अब आप क्या है? मुजिबा है, तो सालिबा निकालो मुतलका आमा। खुद बतला रहे हैं ला शय अमिनल कमरी बिमुन खसिफिन बिल फेली, कोई भी चांद जो है उसको ग्रहण नहीं लगता बिल फेल तीन जमानों में से किसी एक जमाने में। वल मुंतशिरतु, और मुंतशिरा जो है कहते हैं हियल मुंतशिरतुल मुतलकतुल मुकय्यदतु बिल्ला दवामे जाती, ये वही मुंतशिरा मुतलका है जो मुकय्यद है ला दवामे जाती के साथ। नहु कौलिना, जैसे हमारा ये कौल है ला शय अमिनल इंसान बिमुतनफ्फिसिन बिज़रूरति वक्तम मा ला दाइमन, ला दाइमन ले आए। और माकबल में कजिया मुजिबा है सालिबा है? ये सालिबा है, तो देखो आगे मुजिबा निकालेंगे। ऐ कुल्लु इंसानिन मुतनफ्फिसुन बिलफेली, हर इंसान क्या है? मुतनफ्फिस है बिलफेल, हर इंसान मुतनफ्फिस है बिलफेल, यानी तीन जमानों में से किसी जमाने में। चलिए बस भाई, हासिल कलाम ये कि आज आपने मुमकिना आम्मा के बारे में पढ़ा कि मुमकिना आम्मा वो है जिसमें जानिब मुखालिफ से जरूरत का सल्ब होता है, और मुमकिना खासा के बारे में भी मैंने आपको बतलाया उसमें जानिबैन से जरूरत का सल्ब होता है, यानी होना भी जरूरी नहीं और ना होना भी जरूरी नहीं। तो मुमकिना खासा दरअसल दो मुतलका आम्मा होते हैं, एक मुजिबा और एक सालिबा। और फिर उसके बाद मुरक्कबात की बात आई, तो मुरक्कबात में मैंने आपको बतलाया कि बाज़ औकात एक कजिया जिक्र किया जाए तो शुबा पड़ता है कि शायद सुनने वाले पर बात पूरी वाज़ह ना हो, तो उसके साथ एक और कजिया भी जिक्र कर दिया जाता है, इसलिए इसको मुरक्कबा कहते हैं। और दूसरा कजिया जो जिक्र होता है उसकी तरफ सिर्फ इशारा किया जाता है, पूरा कजिया जिक्र नहीं किया जाता,
तो इशारा किया जाता है ला दवाम और ला जरूरत के जरिए, और ला दवाम के जे इशारा होता है मुतलका आम्मा की तरफ, और ला जरूरत के जे इशारा होता है मुमकिना आम्मा की तरफ इशारा होता है। तो मुरक्कबात में एक ही कजिए में ईजाब भी आएगा और सल्ब भी आएगा, और ये जो आगे ला दाइमन आता है इससे ला दवाम जाती मुराद है, इसलिए क्योंकि कजिए के अंदर अगर दवाम वस्फी होगा तो आगे ला दवाम वस्फी अगर ले आएंगे फिर तो इज्तिमाए नकीजैन आएगा, लिहाजा जब कजिए में दवाम वस्फी हो तो आगे ला दवाम कौन सा लाएंगे, जाती लाएंगे। मालूम हुआ तीन जमानों में से किसी जमाने में यह जुदा भी होती है। तो वही मशरूता आम्मा को जब मुकैद कर दिया जाता है ला दवाम जाती के साथ तो उसको मशरूता खासा कहते हैं, और उर्फिया आम्मा को जब मुकैद कर दिया जाता है ला दवाम जाती के साथ तो उसको उर्फिया खासा कहते हैं, और वक्तिया मुतलका और मुंतशिरा मुतलका उनको जब ला दवाम जाती के साथ मुकैद किया जाता है तो उनको सिर्फ वक्तिया और सिर्फ मुंतशिरा कहते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए बस वहादा हुआ अल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।